many, many thanks to Asrayagaura Mahaprabhu to give me opportunity to speak. मैं बहुत आभारी हूँ आश्रयगौर के पास मेरे को मौका दिया हिंदी में कुछ बोलने के लिए. मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है तो मैं कल से हिंदी में बोलना शुरू किया यार. मैं तो सोचा मेरा हिंदी बहुत बुरा होता है इसलिए हिंदी बोल कर बांग्ला बोला. तो हम लोग जो चर्चा करेंगे हम लोग तो ऐसा कथा सुनते हैं ना, लोगों को प्यार से कथा सुनते हैं, आनंद होता है, भगवान का लीला ये कथा होता है. लेकिन ये कथा नहीं है, मैं इसको व्यथा बोलता हूँ. व्यथा मालूम है, कथा व्यथा पीड़ा पीड़ा. इसमें जो पीड़ा उठाने पड़ता है. भगवान का कथा में तो आनंद होता है इसको कथा बोलते हैं, लेकिन एक कथा होता है और ये होता है भक्ति जो का विज्ञान. भक्ति जो का विज्ञान ये उच्च स्तर का विषय वस्तु होता है. द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस भक्ति योग का विज्ञान होता है. जिधर आप लोग कथा में जैसा लीला होगा अच्छा होगा सुनते रहेंगे आनंद इसे ही नहीं होगा. ये जो चर्चा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें. हाँ अध्ययन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा. और दिमाग से ही इसको समझ नहीं जा सकता है, ब्रेन से समझ नहीं जा सकता है. देखिए एक भौतिक ज्ञान होता है और एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है. जो भौतिक ज्ञान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे लोग जाते हैं प्रोफेसर आते हैं सुनते हैं तो लिखा पढ़ा करते हैं. जो लोग अच्छा पढ़ाई करते हैं वो बच्चे को क्या बोलते हैं, वो ब्रेनी लड़का है, इसका ब्रेन अच्छा काम करता है. हाँ और जो परीक्षा में फेल होता है ये ब्रेनलेस, एक कुछ न गब्बा है बुद्धू है. तो ब्रेन का तरह होता है, जिसका अच्छा ब्रेन हो तो समझ पाएंगे. लेकिन आध्यात्मिक विषय अच्छा ब्रेन वालों के लिए नहीं है, ये ब्रेन में समझ नहीं पाएंगे. ये जो विषय चर्चा होगा ना ये तो दिव्य ज्ञान होता है. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित बोलते हैं ना आप लोग. हाँ दिव्य ज्ञान ब्रेन में प्रकाशित बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश होता है. तो इस भक्ति योग विज्ञान को समझने के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए. इसके बारे में श्री कृष्णदास के ब्रज गोस्वामी रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के पहले क्या बताए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे. श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कुछ ग्रंथ रचना नहीं किए, लेकिन उनका पूरा फिलोसफी दूसरा का द्वारा चर्चा करने के माध्यम में जगतवासियों को शिक्षा दी. राय रामानंद के साथ कथन कथन हुआ, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये पांच वरिष्ठ भक्त का साथ जो कुछ चर्चा की, उस चर्चा का जो निष्कर्ष है ये सब कुछ चैतन्य चरितार्थ में लिखा गया है. और प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं भगवत गीता हाई स्कूल स्टडी है और भागवतम क्या कॉलेज है, अरे चैतन्य पोस्ट ग्रेजुएट है. और भक्ति ठाकुर प्रभुपाद ने बताया कभी आपका गांव में बाढ़ आ जाएगा फ्लड तो पानी तो ऊपर उठते रहेगा तो घर में जो कुछ सामान है सब सामान को छोड़ दो, तीन किताब हाथ में लेके छत का ऊपर जाओ. भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृतम उधर ठहरो, पानी उठते रहेगा बढ़ते रहेगा तो हाथ में उठा तीन किताब कैसे पकड़ो. तो बहुत भारी लगता है तो गीता को फेंक दो, और भारी लगता है भागवत को फेंक दो, लेकिन चैतन्य चरितमृतम पकड़ के रखो. लेकिन इसका मतलब नहीं भगवत गीता का ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है इसीलिए इसको छोड़ दो, ये नहीं, भागवत में श्रेष्ठ नहीं है. चैतन्य चरितमृत एक ऐसा ग्रंथ होता है, एक ग्रंथ नहीं है एक नोटबुक है. नोटबुक मालूम है ना, जब आप कुछ नोट करते हैं वेद वेदांत उपनिषद पुराण सब का निष्कर्ष नोटबुक बनाता है. चैतन्य चरितमृत ऐसा ही ग्रंथ है, नोटबुक है. चैतन्य चरितमृत से नोटबुक बनाएंगे और नोटबुक कुछ नहीं है, इतना नोट है, इसमें से क्या नोटबुक बनाएगा. समझते हैं, तो चैतन्य चरितम तो ऐसा एक ग्रंथ होता है। तो श्रील रूप गोस्वामी का माध्यम में भगवान से चैतन्य महाप्रभु जगतवासियों के लिए कैसा श्रेष्ठ वस्तु प्रदान किए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले इस शिक्षा में प्रवेश करने से पहले श्रील रूप गोस्वामी को इतना अच्छा तरीका शिक्षा दे, ए टू जेड सब कुछ इसमें है, शुरू से अंत तक। जो ज्ञान के बारे में इस जगत में वेद वेदांत उपनिषद के द्वारा प्रकाश किया गया, जो ज्ञान को वेद वेदांत उपनिषद प्रसाद ग्रंथ में प्रकाश नहीं भी किया गया, जो ज्ञान का अंत है उसके बारे में इधर बताया। तो देखिए, बहुत पहले पुराना जमाना में उसको वैदिक युग बोलता है, वैदिक युग। वैदिक युग का मतलब जब वेद शिक्षा का बहुत प्रभाव था पृथ्वी पर, उस समय लोगों ने वैदिक धर्म का पालन करते थे, वैदिक शिक्षा का द्वारा समाज परिचालित होता था। वैदिक शिक्षा क्या है? वेदों में जो शिक्षा दिया गया वो शिक्षा में कौन सा तरीका शिक्षा का प्रभाव ज्यादा है? वेद का शिक्षा कर्मकांड का शिक्षा होता है। कर्मकांड मालूम है ना आपको? क्या कर्मकांड? क्या कर्मकांड? अरे अश्वमेध यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, स्वर्ग लग जाओ, चंद्र लग जाओ, पुण्य कर्म, दान कर्म, धर्म पालन कर, इसको वैदिक कर्मकांड बोलते हैं, कर्म मार्ग, कर्मकांड। वेद में 96% एक कर्मकांड के बारे में बताया, 96%। इसको सुगर कोटेड क्विनाइन बोलता है। क्विनाइन तो आप लोग मालूम नहीं है ना, क्विनाइन है? अभी क्विनाइन है? बचपन में मलेरिया होता था ना, क्विनाइन खाते थे, और क्विनाइन बहुत बीटर होता है। बीटर क्या? कड़वा, कड़वा, कड़वा होता है ना, तो शुगर कोटिंग करते हैं। तो भगवान ने पहले कर्मकांड दिए, शुगर कोटेड क्विनाइन, तुम एक करो ओ मिलेगा, एक करो ओ मिलेगा, वो कर्मकांड बोलते हैं। तो वैदिक युग, वैदिक धर्म और पंथ होता था कर्मकांड, ठीक है। उसके बाद दार्शनिक युग, दार्शनिक युग में उपनिषद वेदांत सूत्र इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा। इसमें क्या शिक्षा दिया जाता है? इसमें कर्म ज्ञान कांड का प्रभाव आ गया, ज्यादा ज्ञान कांड, ज्ञान का प्रभाव था ज्यादा। कर्म से लोगों को क्या प्राप्त होता है? कर्म से लोगों को उच्च ग्रहण प्राप्त होता है, स्वर्गलोक, जननलोक, महलोक, तपोलोक, सत्यलोक प्राप्त होता है। ये कर्मकांड का लक्ष्य होता है, ये वेद का लक्ष्य होता है, वैदिक धर्म का लक्ष्य होता है। फिर बाद में जो जब दार्शनिक धर्म का अभ्युत्थान हुआ तो ज्ञान का प्रभाव बढ़ा, तो मुनि ऋषियों को मालूम हो गया, अरे कर्मकांड में फंसना ठीक नहीं है, ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग स्वर्ग जाएंगे, जन्मलोक जाएंगे, लेकिन ये भौतिक बंधन से तो छुटकारा नहीं प्राप्त होता है, इसमें से नहीं फंसना। तो मुनि ऋषियों ने ज्ञान का ऊपर प्रधान दिए। तो ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान से भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने निराकार ब्रह्म को उपासना करना शुरू कर दिए। निराकार ब्रह्म को उपासना करके तो निष्काम कर्म करके ज्ञान का द्वारा तो भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त करके ब्रह्मन लोग प्राप्त होते थे, निराकार ब्रह्म को प्राप्त होते थे। दार्शनिक, दार्शनिक युग, दार्शनिक धर्म, ज्ञान मार्ग, और प्राप्ति क्या होता है? निराकार ब्रह्म को प्राप्ति होता है। याद रहेगा नहीं? रहेगा? ओके। तो वैदिक युग हुआ, फिर दार्शनिक युग हुआ, उसके बाद आया पौराणिक युग। पौराणिक युग में पुराण का ज्यादा प्रभाव हुआ लोगों का ऊपर। पुराण का नित्य नियमों का द्वारा समाज परिचालित होता था। पुराण में क्या दिया गया? पुराण में भक्ति के बारे में बताया गया। कौन सा भक्ति था? वो सकाम भक्ति था। वैदिक युग में जैसा इस देवता को पूजा करो, वो देवता को पूजा करो, ये मिलेगा नहीं, तुम भगवान को पूजा करो, लेकिन कुछ मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए, ये एक को भक्ति बोलते हैं। तो पौराणिक युग में, पुराण में जो शिक्षा दिया गया, उस शिक्षा का द्वारा लोगों को एक विश्वास आ गया कि मेरे को भगवान को भक्ति करना। पहले कर्मकांड करते थे, उसमें ज्ञान किए, उसके बाद भक्ति किए, लेकिन सकाम भक्ति की। किसी लिए भक्ति? मिलने के लिए भक्ति। तो लोगों ने देने वाला भगवान को ढूंढते थे, कौन भगवान देंगे मेरे को कुछ, सकाम भक्ति होता था। तो पौराणिक उसको पौराणिक युग और पौराणिक धर्म को पालन करते थे, वैदिक युग, दार्शनिक युग, उसके बाद पौराणिक युग। तो अभी जो युग चलता है ये युग को भागवत युग बोलते हैं, ये भागवत धर्म बोलते हैं, भागवत धर्म। तो श्रील व्यासदेव ने अंत में तो भागवत धर्म के बारे में लोगों को सिखाया। तो भागवत में जो धर्म के बारे में सिखा दिया गया वो क्या धर्म है? ये क्या धर्म है? ये प्रेम धर्म होता है। भागवत धर्म से पहले भक्ति था, लेकिन भागवत धर्म से क्या हुआ ना, प्रेम भक्ति आया। इससे पहले प्रेम भक्ति नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा, ये पूरा भागवत शिक्षा का ऊपर प्रतिष्ठित होता है। प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो नः परः। महाप्रभु ने भागवत का शिक्षा क्या है ना, पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ क्या मालूम है? क्या पंचम पुरुषार्थ होता है? भक्ति नहीं, भक्ति में बोला ना, भक्ति तो लोगों ने भक्ति करते हैं, पाने के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन ये दूसरा भक्ति है, ये प्रेम भक्ति। भक्ति और प्रेम भक्ति में क्या फर्क है? भक्ति में पाने के लिए, प्रेम भक्ति देने के लिए, समझते हैं? भक्ति करते हैं लोगों ने भगवान से मिल जाए मेरे को, ये निकृष्ट होता है, वो सकाम भक्ति होता है। अब प्रेम भक्ति ये पाने के लिए नहीं, भगवान के पीछे दौड़ते नहीं, भगवान मेरे को कुछ मिल जाए। जगत में भक्ति है, लेकिन ऐसा भक्ति है। फिर भागवत में जो भक्ति सिखाता है महाप्रभु ने, जो भक्ति सिखाए अब महाप्रभु ने, जो रूप गोस्वामी को जो भक्ति दिए वो प्रेम भक्ति, भक्ति के साथ प्रेम जोड़ा दिया गया। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी को रसातार्य बोलते हैं। रस भक्ति है, रस नहीं, प्रेम रस नहीं। भगवान को देने के लिए जो व्यग्रता आकांक्षा वो नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ होता है। देखिए कैसे आस्ते आस्ते कर रहे, लोगों को तो, लोगों ने तो वैदिक शास्त्र अध्ययन करके, वो पांच अंधे थे ना, अंधे हाथी देखने के लिए गए थे, जो जिसको पकड़ता था वो बोला हाथी का मतलब ये एक खम्ब है, पांव को पकड़ाना, वो कभी हाथी देखा नहीं, एक खम्ब को ही हाथी मानता था। कोई कान को पकड़ा था, एक कुल्ला है, क्या कुल्ला बोलते हैं हिंदी मालूम नहीं, तो जो इसके बाद ये समाज में ऐसे ही चलते हैं, वेद को फॉलो करते हैं, लेकिन वेद में जिसमें जो अंश लिखा है उसको पकड़े, ओ यही सब कुछ है। कोई मुनि ऋषि ने कर्म कांड को प्राधान्य देता है, कोई ज्ञान को प्राधान्य देता है, कोई ध्यान को प्राधान्य देता है, कोई भक्ति को प्राधान्य देता है। लेकिन हमारा आचार्यों ने, गोस्वामियों ने क्या किए, नाना शास्त्र विचारणिक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, सब वेद वेदांत उपनिषद पुराण सब अध्ययन करके इसका जो निष्कर्ष उसको निकाल के लोगों को दिए। तो शेष सिद्धांत क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम, प्रेम पुमार्थ महान। भागवत का पहले बताते हैं ना, धर्म प्रज्जित कैतव, तुम धर्म का त्याग करो। कोई मुनि ऋषि पंडित से आप लोग सुने हुए धर्म को त्याग करो? और कौन बोलते हैं धर्म को त्याग करो? भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म प्रज्वलित चिटिंग धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको त्याग करके प्रेम धर्म को ग्रहण करो। तो हमारा क्या धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, क्या धर्म पालन करते हैं हम लोग? सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब नित्य। कौन नित्य है? जीव नित्य है, भगवान नित्य है, और कुछ नित्य है? सबका परिवर्तन होता है। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का मतलब हिंदू बनना। तो सनातन क्या है? नित्य संपर्क भगवान के साथ, जीव का जो संपर्क है उसको धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म का अर्थ लोग कोई समझते नहीं। सनातन का मतलब नित्य। नित्य कौन है? जो वस्तु नित्य है, एक भगवान है और जीवात्मा है, और ये दोनों के बीच में जो संपर्क है वो जो धर्म है वो सनातन धर्म। वो दोनों के बीच में क्या संपर्क है? प्रेम संपर्क होता है, एक प्रेम संपर्क होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को एक भक्ति रसामृत, भक्ति रस का अमृत का जो सिंधु प्रदान किए। तो इस शिक्षा में ए से जेड तक सब कुछ बताया गया। आप लोग कुछ सुने ही सुनेंगे, आप लोग जीवन में कुछ सुने हुए नहीं ऐसे भी सुनेंगे। इसीलिए महाप्रभु ने बोलते हैं ये भक्ति रस का अमृत का सिंधु तो पारापार नहीं, इसका अंत नहीं है। मैं तुमको एक बिंदु चखाऊंगा, चखाऊंगा, टेस्ट कराऊंगा, हाँ टेस्ट कराऊंगा। तो महाप्रभु क्या शिक्षा, महाप्रभु क्या दे रूप गोस्वामी को शिक्षा देने से पहले मैं दो चीज आप लोगों को बताऊंगा, जिसको श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में प्रकाश किए। तो बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन मैं जब महाप्रभु का शिक्षा शुरू करूंगा तब से धारावाहिक आप देख पाएंगे बोर्ड में। तो इससे पहले मैं जब अध्ययन करता था, मेरा नजर में दो चीज आया। एक तो होता है जो महाप्रभु जो शिक्षा देते हैं, कैसा एक आदमी को समझ पाएंगे? महाप्रभु की शिक्षा सब समझ नहीं पाएंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जब कुछ कुछ गंभीर तत्वों को व्याख्या करते हैं, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं मैं जैसा बात अभी बताने के लिए जाता हूं, ये बात लोगों को बोलने का बात नहीं है, ये बात इतना गंभीर है, इतना गुरुत्वपूर्ण, लोगों को सब लोग सुनने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस तत्व को प्रकाश नहीं करूंगा तो जगत तो अंधा रह जाए, कुछ मालूम नहीं रहेगा, इसलिए मैं प्रकाश करूंगा। लेकिन एक बात है, मैं जो बताऊंगा कोई समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो कौन समझ पाएंगे? मैं केवल जो गौर नित्या लोग हृदय में धारण करते हैं वो लोग ही समझ पाएंगे, दूसरे कोई समझ पाएंगे नहीं। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हमारे बहुत आनंद, ये लोग समझ नहीं पाएंगे, हमारे बहुत आनंद आता है। तो जो लोग कितने बड़े डरते हैं, भय लगता है, ये लोग बोलना नहीं चाहिए, वो लोग समझ नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा आनंद क्या है, समझते हैं? तो जो विषय महाप्रभु ने चर्चा करते हैं ये सब लोगों के लिए नहीं, और जो लोग भी श्रवण करेंगे समझ भी नहीं पाएंगे, और कौन समझ पाएंगे? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इधर बोलते हैं, तो महाप्रभु ने तो रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं थे। रूप सनातन गोस्वामी कर्नाटक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, एक समय इतना विद्वान पराक्रमी थे, सम्राट भी थे, साम्राज्य उनका था। फिर आपस में झगड़ा हुआ, पारिवारिक झगड़ा हुआ, तो कर्नाटक छोड़ के बंगाल में चला आए, वेस्ट बंगाल। तो रानाघाट में, नईहट में रहते थे। फिर बाद में तो उधर जाकर उस समय जो हुसैन शाह थे, पश्चिम बंगाल के जो नवाब थे, उनका प्राइम मिनिस्टर थे, राइट हैंड मैन सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी उनका फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ऑर्डिनरी पर्सनलिटी नहीं है, पूरा साम्राज्य ये दोनों का द्वारा परिचालित होता था, फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों में थे। तब तो मुसलमान का राज्य राजत्व करते थे, तो उनका नाम भी परिवर्तन हो गया था, क्या नाम था मालूम है? शक्कर मलिक दबीर खास, सनातन गोस्वामी का नाम था सकर्मलिक और रूप गोस्वामी का नाम था दलोई खास, तो मुसलमान दीदी। तो उसका उससे पहले वो दोनों का नाम था संतोष और अमर, सनातन गोस्वामी का नाम था अमर, रूप गोस्वामी का नाम था संतोष, और उनका और एक भाई था अनुपम बल्लभ, ये तीन भाई थे। और कोई कोई ग्रंथों में चार भाई रघुनंदन करके और एक भाई के बारे में भी बताते हैं। तो रूप गोस्वामी तो महाप्रभु कृपा प्राप्त है, महाप्रभु रामकली जाकर रूप सनातन को कृपा का आशीर्वाद किए, तो सब कुछ छोड़ के भाग गए ये दोनों भाई। तो प्रयाग में मिलित तो हुए, तो प्रयाग में दस अश्वमेध घाट में 10 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, सनातन गोस्वामी को वाराणसी में शिक्षा दी 2 महीना तक, और लंबी शिक्षा दी सनातन गोस्वामी को, और रूप गोस्वामी को 10 दिन में शिक्षा दी। तो इधर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताते हैं भाष नंबर 114 लोक भीड़ भय प्रभु दशाश्वमेध जाया रूप गोस्वामी शिक्षा कराने शक्ति संचार्य। भाष नंबर 114 आप एक शब्द का पर ध्यान देना, शक्ति संचार्य कितना बार प्रयोग करते हैं श्री कृष्णदास के ब्रज गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी रे शिक्षा करान शक्ति संचारिया, उनका अंदर में शक्ति का संचरण किए, श्री रूप गोस्वामी का कृपा प्रदान किए, कृपा प्रदान करके कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत ये है श्लोक है बड़े में सब सिखाएल प्रभु भागवत सिद्धांत। भागवत का सिद्धांत का ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा प्रतिष्ठित था, कृष्ण तत्व के बारे में, भक्ति तत्व के बारे में, और रस तत्व का प्रांत शेष अवधि तक सिखाए। नेक्स्ट वर्ष देखिए, रामानंद पासे जत सिद्धांत सुनिला रूपे कृपा करी तहा सब संचारिला। सेम वर्ड अगेन यूज, एक शब्द, क्या शब्द है क्या शब्द संचारिला, इसको वो आद देते हैं, संचरण करते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ष देखिए, श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण कर, सेम वर्ड अगेन शक्ति संचरण करते हैं ना। फिर 119 वर्ष देखिए, उधर भी ऐसा ही बोलते हैं, जे काले न वृंदावन कलिवार्ता लुप्तति तं छापयितुं विशिष्य कृपामृतेन अभिषेच देव तत्रैव रूपञ्च सनातनञ्च। काल का प्रभाव से वृंदावन में भगवान का कलिवार्ता जो लुप्त हो गया था, छापयितुं उसको लोगों को क्या छापयितुं प्रकाश करने के लिए, तो कृपा अमृत अभिषित अभिषेक फिर अभिषिन कृपा अमृत अभिषिंचन किया। फिर श्रील रूप गोस्वामी स्वयं भी वर्णना करते हैं उनका ग्रंथ में, मैं जितना मूर्ख हूं, मेरा मूर्ख मैं इतना पतित हूं, गौरांग महाप्रभु मेरे कृपा करके मेरे अंदर में ये शक्ति संचरण की। तो इससे हम लोग ये शिक्षा लेना चाहिए जब भगवान के बारे में जो तत्व अभी चैतन्य महापुरुष रूप गोस्वामी को प्रदान करेंगे, वो शिक्षा हम लोग बुद्धि का द्वारा समझ नहीं पाएंगे, ये तो बुद्धि का अतीत होता है। प्रेम वस्तु शरीर मन और बुद्धि का अतीत होता है, ये वस्तु सिर्फ भगवान का कृपा से ही हम लोग समझ पाता है। सही से ईश्वर तत्व बुझीवारे पारे ईश्वर कृपालेस जाए, जिनको भगवान का कृपा होता है वही समझ पाता है, ये समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान का करुणा को प्राप्त करने के लिए हृदय में प्रयास रहना चाहिए, प्रार्थना रहना चाहिए। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं उनका प्रार्थना में, अथापित देव पदाम्बुज दया प्रसाद लेसान गृहित हे वही जानाति तत्व भगवत महिमनो नाचन एक चरण विचिन्न। हे प्रभु, हे देव, आपका चरण का एक बिंदु कृपा प्राप्त होने से ही जानाति तत्व भगवत महिमनो, भगवान को आपका महिमा को मैं जान पाता हूं। नहीं तो जन्म जन्मांतर में कोशिश करने से जान नहीं पाऊंगा। भगवान को जानकर करना इतना आसानी नहीं है। भगवान को जान पाएंगे? हाँ, जान पाएंगे? चेष्टा करेंगे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। अरे ब्रह्मा जी भगवान को जानने के लिए कोशिश किए थे। ब्रह्मा जी ने 100 साल तपस्या की। ये हमारा 100 साल नहीं, स्वर्गीय 100 साल तपस्या करके ब्रह्मा जी ने बताया। बाद में तो प्रभु जी अभी मैं आपको समझ लिया, समझ पाया। हाँ, 100 साल तपस्या करके तो भगवान नारायण सामने में आविर्भूत हो गए। पूछे ब्रह्मा, मेरे को समझ लिया तुम? भगवान वस्तु को समझ लिया? तो ब्रह्मा जी ने बोला, हाँ प्रभु जी, 100 साल कठोर परिश्रम करके आपको मैं समझ पाया। तो तुम क्या समझा मेरे के बारे में? तो ब्रह्मा जी ने बताया, 100 साल कठोर तपस्या करके मैं समझ गया कि आपको कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। ये भगवान का समझ गया का मतलब, ये सब कुछ पढ़ के जब ये सिद्धांत में पहुंच जाएंगे जी, इसको मैं समझ नहीं पाऊंगा, सब कुछ छोड़ के सिर्फ सेवाई करो बस, ये भगवान का समझ। इसीलिए भगवान ने इतना ज्ञान दिए, वेद वेदांत उपनिषद, दिमाग को सब गड़बड़ करने के लिए। यह दिमाग गड़बड़ होगा सब छोड़ के। महाप्रभु ने क्या किए? हम बहुत बड़ा पंडित थे, बहुत पंडित था, तो सब अंत में क्या के ना, सब बांध के गंगा में फेंक दिए। जितना पोथी था ना, सबको बंडेज कर गंगा में फेंक दिए। बस हरे कृष्ण करो, बस हो गया। महाप्रभु का लाइफ क्या था? महाप्रभु का लाइफ में क्या था? उधर पंडाल प्रोग्राम नहीं था, सेमिनार नहीं था, स्लाइड प्रेजेंटेशन नहीं था, कुछ नहीं था। महाप्रभु का मूवमेंट में हरिनाम करो, नाचो, खूब टायर्ड हो जाओ तो गंगा में, नहीं तो समुद्र में नहाओ, बहुत करे प्रसाद था, थोड़ा विश्राम करो, फिर नाचो गाओ, फिर टायर्ड हो गया, फिर प्रसाद। यही था महाप्रभु का मूवमेंट, इसी महापुरुष मूवमेंट। नाचो गाओ भक्त सने, करो हरि नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। ये अंत है, ये विद्या का अंत होता है। तब तक पहुंचने के लिए हम लोग ये सब जानकारी करते हैं, क्या ज्ञान है, क्या कर्म है, क्या ध्यान है, क्या भक्ति है, क्या प्रेम भक्ति है, ये लोग ये सब चीज हम लोग को ढूंढने पड़ते हैं। तो इसलिए हम कृष्णदास के समय बताते हैं कि हम लोग को कुछ भगवान का आशीर्वाद से होता है। तो इसके बाद में श्री रूप गोस्वामी के बारे में बताते हैं। तो रूप गोस्वामी का कितना वैराग्य था, देखिए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने ब्रज में रहते थे, वृंदावन में। तो अब का वृंदावन तो आज का वृंदावन तो सही था नहीं, आज का वृंदावन तो कंक्रीट जंगल बन गया, तब का वृंदावन तो बन नहीं था। रूप सनातन रहते थे, कुटिया नहीं था, बहुत गर्मी ठंडी में रहते थे। 12 किलोमीटर जाते थे क्या करने के लिए, माधुकरी करी खाने के लिए। इतना वैराग्य था, इतना तपस्या करते थे। तो हम लोग जब सुनते हैं, ओ रूप सनातन इतना कष्ट करके रहते थे, कुत्ते नहीं था, खाने के लिए कैसा खाते थे, माधु करी करके खाते थे, बहुत कष्ट करते थे, बहुत परेशानी होता था। हाँ ना नहीं बताता ना? नहीं नहीं होता था लोग, क्योंकि उन लोगों ने एक कृष्ण रस को आस्वादन कर इतना आनंद पाते थे, मकान का सुख उनका मन में नहीं आता था, अच्छा खाने पीने का सुख मन में नहीं आता था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, जब कभी भक्त लोग मैंने वृंदावन से पूरी जाते थे, नवद्वीप आते थे, तो दूसरा भक्त रूप सनातन के बारे में पूछते थे। तो 125 देखिए, कह तहां कैसे रहे रूप सनातन, कैसे रहे कैसे वैराग्य कैसे भोजन। 125 में वैष्णव लोगों ने पूछते थे, कोई वृंदावन से आते थे तो वैष्णव लोगों ने पूछते थे कहता है कैसे रहे रूप सनातन, रूप सनातन कैसे लोग रहते हैं, कैसे रहे लोग का वैराग्य भाव कैसा है, लोग क्या खाता है, तो लोग क्या खाता है, कैसा कृष्ण भजन करता है, इसके बारे में सुनिए। रूप गोस्वामी का लाइफ स्टाइल सुनिए। अनेक 127 अनिकेत दुहे बने जते वृक्ष गान एक तो आप लोग गाएंगे अनिकेत की सुर में गाएंगे अनिकेत दुहे बने जत अनिकेत दुहे बने जत वृक्ष गान एक का वृक्षर तले एक का रात्रि सया उनका मकान कैसा था, 2 मंजिली 10 मंजिली 20 मंजिली मकान नहीं था, एयर कंडीशन घर में नहीं था, क्या था, अरे कुटिया भी नहीं था, पेड़ का नीचे रहते थे, वो भी एक पेड़ का नीचे नहीं, एक का रात्रि सहन करते थे, लाइफ स्टाइल देखिए वहां लाइफ स्टाइल। और पहले जमाने में क्या थे, कैसा लाइफस्टाइल था उनका, अरे तो मिनिस्टर थे, कैसा लाइफस्टाइल था, और वो लाइफस्टाइल देखिए और अभी का लाइफस्टाइल देखिए। ये तो रहना मकान के बारे में बताए, और खाने के बारे में बताते हैं नेक्स्ट वर्स। विप्रगृह स्थूल भिक्षा कहां मधु करी, शुष्क रुटि चाना चिबाए भोग परिहरी, तो घर घर पर जाकर भिक्षा करते थे, कोई ब्राह्मण घर मिल जाता था तो स्टूल लगा पेट भर के खा लेते थे, नहीं तो माधुकरी करते थे, और माधुकरी करने के लिए वृंदावन से मथुरा आने पड़ता था, क्योंकि मकान को लोग नहीं रहते थे, 12 किलोमीटर रोज आने जाने करने पड़ता था, 12 किलोमीटर आते थे जाते थे, माधुकरी करते थे, तो वो था खाना, सूखा रोटी चिबाते थे और चना चिबाते थे, ये था उनका फूड स्टाइल। वो लोग क्या खाने वाले थे, क्या खाते थे, अभी क्या खाता है देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट कोरोया मात्र हाथे कंथा छिड़ा बहिर्वास, तो कोरोया मात्र हाथे कंथा छिड़ा बहिर्वास, तो कॉमन रूम में पानी लेके जाते थे और क्या पहनते थे, सीढ़ा कंथा पहनते थे। सनातन गोस्वामी ने आए ना वहां पर देखा करने के लिए, उनका उनका भगना क्या है, भगना हिंदी में भगना भांजा, उनका भांजा, हाँ भांजे बोलते हैं ना, कौन भांजे बोलते हैं महाभारत में सबके बोलते भांजे याद है उनको, तो भांजा ऐसा ब्लैंकेट दिया था किसको, सनातन गोस्वामी को, तो महाप्रभु को तो मिला है, तो महाप्रभु को साक्षात किया, तो महाप्रभु वो तो बैरागी बन गए, लेकिन ऐसा बहुत कंबल ब्लैंकेट लेके आए हुए, महाप्रभु देखते हैं ना तुम बैरागी बन गए, इतना ऐसा कंबल लेके आए हुए, सनातन गोस्वामी तो ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर, तो महाप्रभु कुछ बोले नहीं, तुम सन्यासी बन गए बैरागी बन गए इतना अच्छा क्लॉक ब्लैंकेट पहनते क्यों, बोले नहीं, सब देखते थे, और ही वेरी शार्प नो सनातन गोस्वामी समझ ली जो महाप्रभु का अच्छा नहीं लगता है बहुत कमल पीना। तो गंगा के किनारे पर गए, तक बंगाल का भिखारी था, भिखारी गंगा के किनारे पर एक छिड़ा कंठा था, छिड़ा कंठा था, कोयल था, तो बोले तुम इसको बहुत कंबल लेके एक कंठा दे के मेरे को, तो बोले तुम मेरे क्यों उपहास करते हो, तो इतना आशा कम्बल लगे छिड़ा कोई लगा नहीं, तुम इसको लेते हो महाप्रभु को, फिर छिड़ा कंठा लेके आया सनातन गोस्वामी, तो महाप्रभु जब देखा ना खूब खुश हो गए, महाप्रभुर भक्तजन वैराग्य प्रधान, महाप्रभुर भक्तजन तो वैराग्य प्रधान, जहां देखे तुष्ट हन गौर भगवान, महाप्रभु बहुत आनंद होता था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर प्रभुपाद ने बताते थे, गौड़ी मठ महाराज जी बताते थे, तो महाप्रभु आए, महाप्रभु आके रूप सनातन गोस्वामी रघुनाथ जो कोटिपति करोड़पति लोग थे वो लोग भिखारी बना दिए, अब प्रभुपाद आके भिखारी को कोटिपति बना दिए हेलो महाप्रभु आके इतने जमींदार अमीर थे और लोग को ब्रह्मचारी को भिखारी बना दिए और इस कर्म आके चलो कुछ भी नहीं कितना देखो ऐश्वर्य हो गया। तो इसका मतलब तो कृष्णदास को समय बता देता है तो भगवत प्रेम रस में ये लोग इतना डूबे रहे थे, इतना ऐश्वर्य होने से भी जो आनंद नहीं मिलता था तो उससे ज्यादा आनंद इससे मिलते हैं। सुनने से हम लोग लगते हैं ओ इतना परिश्रम परेशानी होता है, ब्रज में रह कितना कठोर तपस्या करते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा रहते थे, हाँ ऐसा कपड़ा पहनना पड़ता था, लेकिन उसमें से भी वो लोग बहुत आनंद में थे। किससे आनंद आता था? खाने से, सुने से, कैसा सोते थे? अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारिदंड शयन, हर समय तो कृष्ण भजन करते थे, दो अढ़ाई घंटा सोते थे, दो अढ़ाई घंटा सोते थे, लेकिन वो भी नहीं होता था। 130 फर्स्ट नंबर नाम संकीर्तन न सह कौन दिन, कोई दिन वो भी नहीं होता था। वो लोग सोना खाना पीना पहनना देखिए फट स्टाइल, कैसा मकान था, कैसा वस्त्र था, कैसा खाने खाते थे, लेकिन उनका आनंद कैसा था। 129 कोरोना मात्र हाथे कंथा छिड़ा बहिर्वा कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, उल्लास उल्लास का मतलब क्या है? किससे उल्लास? कृष्ण नाम पृथक कृष्ण कथा, खाने से नहीं, पीने से नहीं, सोने से नहीं, मकान से नहीं, पहनने से नहीं, ये लोग का सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट क्या था? हाँ ये लोग का आनंद का उद्भव स्थल क्या था? हाँ लोगों ने तो हम लोग तो सोचते हैं ज्यादा मिलेगा तो हम लोग आनंद मिलेगा, लेकिन भगवत भक्ति में ऐसा शिक्षा दिया तुमसे कुछ तुम्हें कुछ नहीं तब भी आनंद मिलेगा, कुछ नहीं तुम्हारे पास तब भी आनंद कैसे मिलेगा? ये कितना अच्छा बात है ना। हम लोग सोचते हैं मेरे को मिल जाएगा तो आनंद मिलेगा, और जो लोग को मिला होगा तो आनंद मिलते ही नहीं वो लोग को मालूम है, जो लोग नहीं है वो लोग सोचते मिलने से आनंद मिलेगा, और जो लोग को मिला है वो लोग तो आनंद नहीं मिलते हैं। लेकिन इसमें ये शिक्षा दिया गया, ये ग्रेटनेस है महाप्रभु की शिक्षा के, तुम्हारे पास कुछ नहीं तब भी तुमको कैसा आनंद मिलेगा। ना कृष्ण का कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, ऐसा करते थे और भक्ति शास्त्र रचना करते थे। आप लोगों ने कभी भविष्य में अभी नहीं रूप सनातन ग्रंथ अध्ययन करेंगे, ललित माधव, विदग्ध माधव, बृहत भागवत में तो ग्रंथ कितना अच्छा चीज लिखा गया, और लेखा में जो लोग डूबे रहेंगे आप लोग अभी पढ़ेंगे तो आप लोग तो खाना पीना भूल जाएंगे, और जिनका हृदय में ये लीला का स्फूर्ति होता था उससे लोग कितना ना आनंद पाते थे, और लोग को खाने पीना सुनने का क्या मन में रहेगा। हाँ जो लोग ऐसा आनंद आता था हृदय में वो लीला का स्फूर्ति होता था, उन लोग को मन में तो कुछ भी आनंद नहीं आएगा। कितना अच्छा आर्ट ऑफ लिविंग बताए ये महापुरुष का, आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, महापुरुष का आर्ट ऑफ लिविंग कंप्लीट अपोजिट। कैसे भक्ति से कैसे लोग आपको सुख पाएंगे। तो महाप्रभु ने तो भक्ति रसामृत सिंधु एक ज्ञान देंगे। 139 वर्स नंबर 139 ओके। प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसर लख, सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाए वर्णन। नहीं मेरा नहीं, इधर नहीं, 139 सॉरी सॉरी 136 सॉरी 136 वा प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसर लख, सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाए वर्णन। नेक्स्ट वर्स परापर शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तुम्हें तखाइते तार कही एक बिंदु। मैं तुमको भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में बताऊंगा। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु सागर का तो पारापार नहीं है, अंत नहीं है। तो उसमें से मैं एक बिंदु तुमको चखाऊंगा। एक बिंदु टेस्ट करने से मालूम हो जाएगा ना, एक बिंदु समुद्र का पानी टेस्ट करने से समुद्र का पानी क्या है, खारा है मालूम हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बना है, एक बिंदु से मालूम हो जाएगा इस सिंधु में क्या है। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं तुमको एक बिंदु ये शिक्षा दूंगा तुमको। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव का 84 लक्ष जोनिते करो ये भ्रमण। तो अनंत जीव होते हैं, 84 लाख जीव जोनि होते हैं। आप लोगों को मालूम है, आप लोग सुनेंगे तो 84 लाख जीव जोनि होते हैं। तो उसमें से 9 लाख जलज होते हैं, पानी में रहते हैं, 20 लाख वृक्ष लता होते हैं, कृमि कीट 11 लाख होते हैं, पक्षी 10 लाख होते हैं, पशु 30 लाख होते हैं और मनुष्य 4 लाख होता है। 84 लाख जीव जोनि होता है। तो ये जितना आत्मा है जीव होता है उस सबको दो भाग में विभक्त किया गया। 144 वर्स नंबर 144 आप लोग देख पाएंगे जो कैसा महाप्रभु ने वर्णना करते हैं। तो दुनिया में जितना सारे जीव है वो दो तरीका जीव होता है। तार मध्य स्थावर जंगमय द्वि भेद, जंगमय तिर्जग जल स्थलचर विभेद। नहीं मिला नहीं 144। तार मध्य स्थावर जंगम द्वि भेद, जंगमय तिर्जग जल स्थलचर विभेद। तो दो तरह का जीव होता है, स्थावर होता है और जंगम होता है। स्थावर किसको बोलते हैं, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं। कौन लोग चल फिर नहीं सकते हैं, और पेड़ होता है, पत्थर होता है, पत्थर भी जीव होता है। हाँ हिमालय पत्थर है ना, तो हिमालय के कन्या का नाम क्या है, पार्वती। तो पत्थर भी बच्चा पैदा करता है तो पत्थर में भी आत्मा होते हैं, पेड़ में भी आत्मा होता है। उनका चेतना आवृत है फिर उधर आत्मा होता है। तो दो तरीके का जीव होता है, स्थावर होता है, जंगम होता है। स्थावर तो चल फिर नहीं सकता है, जंगम तो चल फिर सकता है। याद रहेगा दो क्या है, दो तरीके का जीव, स्थावर और अच्छा जो चलते फिरते रहते हैं वो तीन तरीका होता है, जलचर, भूचर और खेचर। ख का मतलब आकाश, आसमान, आकाश। जो पक्षी उड़ते हैं ना वो खेचर बोलते हैं। पानी में जो लोग रहते हैं उसको जलचर बोलते हैं, भूमि में जो रहते हैं उसको भूचर बोलते हैं। हाँ तो स्थावर जंगम, और जंगम में तीन, भूचर, जलचर और स्थलचर। अच्छा स्थलचर में जो रहते हैं उसमें से मनुष्य का संख्या कितना कम होगा, अब कंपेयर करके देखिए। अनंत जीवात्मा होते हैं, अनंत जीवों में से स्थावर बहुत चले गए, जंगम कुछ हो गए, जंगम में बहुत खेचर चले गए, बहुत जलचर चले गए, और स्थलचर का संख्या बहुत कम हो गया। और स्थलचर में पशु होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। तो पशुओं को बाद जानवर को बाद देने से मनुष्य का संख्या कितना होता है, 4 लाख स्पेसिस होता है। इन संख्या बहुत कम ही होगा ना, बहुत कम ही होगा ना। तो मनुष्य जो होते हैं 145 नेक्स्ट वर्स, तार मध्य मनुष्य जाति ही अति अल्पतर, तार मध्य मृच्छ पुलिंद बौद्ध सवार। उसमें से मनुष्य जाति तो बहुत कम होता है, और मनुष्य जो होते हैं उसमें से ज्यादा होता है मृच्छ पुलिंद बौद्ध सवार, जो लोगों ने वेद को मानते नहीं। ये लोगों ने वेद को, जवान लोग होता है, मृच्छ होता है, बुद्धिस्ट लोग होता है, सवर जंगल का वेद को माने, वो वेद को मानते नहीं। एकटा घड़ी दाम अगर तो वेद को मानते नहीं, तो मनुष्य में फिर देखो ये लोग से बात पड़ गए तो वेद को मानते हैं, ये लोग का संख्या कितना होगा? बहुत कम होगा ना, बहुत ही कम होगा। कितने लोगों ने वेद को मानते हैं? कौन सा देश का लोगों ने वेद को मानते हैं? हाँ, भारत के लोग का मानते हैं, हम दूसरे के मानते नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वर्स, वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गने। तो भारतीय लोगों ने, हिंदी लोगों ने वेद को मानते हैं, उसमें से अर्धक तो मुंह में मानते हैं, काम में करता है। हाँ, जो हिंदू लोग होता है सब वेद को मानता है, मानता है मैं हिंदू हूं, फिर वेद में जो बताया गया धर्म पालन करता है, भगवत गीता को मानता है, भगवत गीता में बताया। हाँ, तो जो तुम खाते हो भगवान को अर्पण करके खाओ, कितना हिंदू भगवान को अर्पण करके खाते हैं। इसीलिए इधर महाप्रभु ने बोलते हैं जो लोग वेद को मानने वाला वो लोग का संख्या तो बहुत कम होता है, और उसमें से अर्धक होता है वो मुंह में मानते हैं, काम में नहीं करते हैं, मुंह में मानते हैं और वेद निषिद्ध कर्म करते हैं, कर्म को मानते हैं। और जो अर्धक होता है वो लोग वेद को सही सही मानते हैं, वेद को सही सही मानते हैं, वेद को शिक्षा को जीवन में उतारते हैं। तो क्या करते हैं लोग, वेद की शिक्षा को कैसे जीवन में उतारते हैं, क्या फॉलो करते हैं? हाँ, वो कर्मकांड करते हैं। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि 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 कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। तो जो लोग ने धर्माचरण करते हैं, धर्म को मानते हैं, वेद को मानते हैं, उसमें से अधिकांश ही कर्मनिष्ठ होता है, वो कर्मकांडी होता है, यज्ञ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, श्राद्ध करते हैं, विवाह करते हैं, ये सब कर्मकांड होता है, इसमें से लगे हुए कर्मकांड। कर्मकांड का द्वारा क्या लाभ होता है, क्या प्राप्त होता है? हाँ, स्वर्गलोक, चंद्रलोक, हाँ, जनलोक, महलोक प्राप्त होता है। तो इसको कर्मनिष्ठ बोलते हैं, तो कर्मकांडी बोलते हैं। तो महापुरुष जो बताते हैं सही बात है, सही है ना? हाँ, मतलब जो हिंदुओं में वेद को मानने वाला हिंदू है मुंह में मानता है ना, काम में मानता है, मुंह में मानता है, और उसमें से जो भी काम में मानता है। तो आप लोग जैसा रिलीजियस बैकग्राउंड से आए हैं, धर्म कर्म करते हैं, महारणी लोग धर्म कर्म करते हैं, बैंगल पूजा करते हैं, बिहार में छठ पूजा करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, ये लोग से बैकग्राउंड से आया था ना, क्या ज्यादा मानते हैं हम लोग? कर्मनिष्ठ है ना, वो कर्मनिष्ठ है ज्यादा, ये कर्मनिष्ठ होता है। बोलते हैं कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ है, जो कोटि एक करोड़ कर्मियों के बीच में एक ज्ञानी बहुत मुश्किल, एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। कर्मनिष्ठ और ज्ञाननिष्ठ में क्या फर्क होता है? कर्मनिष्ठ लोग होता है वो सुकर्म पुण्य कर्म करके इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए कोशिश करते हैं, जो ज्ञाननिष्ठ होता है इससे छुटकारा करने की कोशिश करते हैं, उनका संख्या और कम हो जाता है। तो अभी देखिए ऐसा ज्ञाननिष्ठ अनंत जीव से ज्ञाननिष्ठ का संख्या कितना कम हो जाएगा, अनंत जीव को दो भाग में विभक्त किया गया। क्या है दो भाग? स्थावर और जंगम, जो चल करता है। जंगम का तीन भाग में विभक्त किया गया। क्या होता है? जलचर, भूचर और खेचर। अब भूचर में जो रहता है, मनुष्य का संख्या कितना है? 4 लाख स्पेसिस है मनुष्य का। तो उसमें से ज्यादा क्या वेद को मानते नहीं, वेद को मानने वाला की संख्या बहुत कम। और जो वेद को मानते हैं उनमें से अना ज्ञान नहीं, उनमें से अर्धक कट गए, मूर्ख में मानते हैं। और जो अर्धक रहता है उनमें से ज्यादा क्या करता है? कर्मनिष्ठ, कर्मकांड करते हैं। तो कर्मकांडियों में 1 कोटि कर्मनिष्ठ का बीच में 1 ज्ञानी सृष्टि होता है। नेक्स्ट वर्स, कोटि ज्ञानी मध्य आए एक जन मुक्त। तो ज्ञानी होने से जो मुक्ति हो जाता है, ऐसा नहीं। 1 करोड़ ज्ञानियों में से एक मुक्त जन, एक आदमी मुक्त होता है। सब मुक्त नहीं होता है, एक मुक्त होता है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। जो कोटि आदमी मुक्ति लाभ करते हैं उसमें से एक आदमी होता है, होता है नहीं, वो दुर्लभ है, वो होता बोलते नहीं। और सब होता है, कोटियों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ रहता है, एक ज्ञान कोटि ज्ञान में एक मुक्त श्रेष्ठ रहता है, लेकिन कोटि मुक्त में एक कृष्ण भक्त नहीं होता है। वो दुर्लभ, उसको ढूंढना पड़ेगा, मोमबत्ती लगा के ढूंढना पड़ेगा, किधर है तुम कृष्ण भक्त। तो ये चर्चा क्यों महाप्रभु करते हैं? इसका तरह महाप्रभु हम लोग समझे, देखो कितना दुर्लभ है कृष्ण भक्त, कितना दुर्लभ होता है। तो आप लोग अभी सोचिए कितना भाग्यवान भाग्यवती है आप लोग, आप लोग का सौभाग्य सोचिए। ये सब कुछ अवैदिक वेद कर्म ज्ञान सब का फांस ना फांस, फांस क्या फांस से फांदा से छुटकर प्राप्त तक आप इधर तक आ गए ना, भक्ति के लाइन पर आए ना, ये कितना भाग्य का कारण हो सकता है। हम लोग कितना सौभाग्यवान है। आप पहले जमाने बहुत पुण्य कर्म किए थे ना, इसलिए हो ना, इसलिए ना, पुण्य कर्म से नहीं होता है ये सौभाग्य हुआ ना हम लोग का। किसी कैसा सौभाग्य हो गया हम लोग का? कृष्ण कृपा से, कृष्ण थोड़ी कृपा कर दे किसी को, प्रभुपाद का कृपा से। हम लोग का सौभाग्य नहीं, हम लोग दुर्भाग्य है। साधु वैष्णव ने हम लोग का सौभाग्य बनाता है। एक भक्त प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भक्ति लाइन में आया, मैं बहुत भाग, तुम भाग्यवान नहीं हो, मैं तुमको भाग्य दिलाया तुमको। ये सब चीज प्राप्त होने के लिए हम लोग का सौभाग्य नहीं है, पुण्य कर्म से नहीं होता है, सौभाग्य से नहीं होता है। ये महान आचार्य ने आके हम लोग का सौभाग्य तैयार करते हैं, ये प्रभुपद की कृपा से होता है। नहीं ये ज्ञान किधर है, हम लोग किधर रहते थे? कितना ऊंचा ज्ञान है, कर्म ज्ञान ध्यान सब कुछ। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, इस स्तर में आना का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन लोगों ने तो शास्त्र का निर्देश को फॉलो कर भी फंस जाता है ना, शास्त्र पढ़ते हैं, कोई कर्म करने में फंसे हुए, कोई ज्ञानी बन के फंसे हुए, कोई तपस्वी बन के फंसे हुए, कोई ध्यान करता है, जमन प्राणायाम करता है, क्या क्या बाबा, क्या बाबा का नाम क्या है, राम बाबा, राम बामदेव, रामदेव, रामदेव बाबा प्राणायाम, वो तो शरीर के लिए करते हैं, लेकिन प्राणायाम को तो लक्ष्य ये नहीं ना, तो आप परमात्मा को उपलब्ध करना। रामदेव का जो ध्यान वो तो असली प्राणायाम नहीं है। तो जो असली प्राणायाम, जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो आत्मा को स्मरण करते हैं, देखते हैं, वो तो दूसरा तरीका होता है। तो नेक्स्ट वर्स, तो कृष्ण भक्त कैसा दुर्लभ तो बताया अभी तक, ठीक है, कृष्ण भक्त दुर्लभ, इसके बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया कैसा दुर्लभ है, याद रहेगा ना, कर्म ज्ञान ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, ये कृष्ण भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, ये तो दुर्लभ मान गया मैं, ये दुर्लभ है लेकिन क्यों श्रेष्ठ है। कृष्ण भक्त निष्काम अतेव संत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले असंत। कृष्ण भक्त निष्काम, ये निष्काम शब्द के बारे में मैं बताऊंगा, इसलिए वो संत है, वो असंत नहीं। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, और सब अशांत, कोई शांत नहीं है। भुक्ति कामी, भुक्ति कामी सिद्धि कामी और मुक्ति कामी। भुक्ति के बाद कहने का मतलब क्या है, जो भोग इंद्रिय भोग चाहते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, ठाकुर देवताओं का पूजा करते हैं, ओ माँ दुर्गा देवी धनम दही दशम दही, हाँ ये इसको भुक्ति कामी बोलते हैं। भुक्ति कामियों का गति कितना दूर होता है, क्या प्राप्त होता है भुक्ति कामियों को, स्वर्ग तक प्राप्त होता है। उसके बाद मुक्ति कामी, मुक्ति कामी कौन सा योगियों ने मुक्ति कामी, ज्ञान योगी मुक्ति कामी करके ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होता है। सिद्धि कामी, सिद्धि कामी क्या है, ज्ञान में ध्यान नहीं, ध्यान नहीं, ये अष्ट सिद्धि प्राप्त होता है, अनिमा लघिमा महिमा, उसके बाद प्राप्ति प्रकम्म इसिता बसिता कम बसिता, इस सिद्धि होता है। आप लोग बैठे रहते हैं इतना सिद्धि का द्वारा इतना हल्का हो जाएंगे ना, उड़ के जा पाएंगे, इतना छोटा जगह छोटा सिद्धि घुस जाएंगे, इस सिद्धि से एक प्लैनेट भी तैयार कर पाएंगे, पानी का ऊपर जा पाएंगे, ऐसा सिद्धि है सिद्धि को प्राप्त होने से। एक बार प्रभुपाद को कोई भक्त आकर बोला, प्रभुपाद स्वामी जी इंडिया से बहुत बड़ा योगी आए, क्या योगी करता है ना, इतना बड़ा योगी है वो नदी पैदल में नदी पार हो सकते हैं, पानी में जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, बहुत बड़े योगी हो गए, बहुत साधन किए, हाँ 40 ईयर्स 40 साल योग साधना करके सिद्धि मिला, तो पैदल में नदी पार कर पाएंगे। तो प्रभुपाद ने वो 40 साल साधना के सारा उम्र चला गया, अरे मैं तो 6 पैसा देकर नदी पार हो पाऊंगा, और सारा उम्र का नदी पार होने के लिए क्यों खर्चा करूंगा। ये तो भक्त का विचार होता है। फिर बाहर लोगों को देखो, कोई बोलेगा एक योगी आता है तो गंगा नदी पैदल में पार हो गए तो सारा कलकत्ता के उधर पहुंच जाएंगे ना, लेकिन भक्त के लिए कुछ नहीं, ये सिद्धि कमी बोलते हैं। अनिमा लघिमा प्राप्ति, इधर बैठ के सिको घड़ी मिल जाएगा, हाथ में दे देंगे सब शिष्य लोग को देंगे, इसको सिद्धि बोलते हैं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतिरिक शांत। तो निष्काम शब्द का माने क्या होता है, निष्काम शब्द का माने क्या होता है, कोई इच्छा नहीं है। तो कोई इच्छा नहीं का मतलब क्या होता है, क्या इच्छा नहीं, भौतिक वस्तु पर, आध्यात्मिक वस्तु पाने के लिए इच्छा है ना, हाँ ना नहीं, भौतिक वस्तु पाने का इच्छा नहीं, आध्यात्मिक वस्तु पाने का इच्छा नहीं, क्या पाने का इच्छा है, कृष्ण प्रेम से तो आनंद है ना, कृष्ण प्रेम क्यों तुमको चाहिए, कृष्ण प्रेम करने से आनंद मिलेगा ना, वो भी नहीं चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान का संतुष्ट करना चाहिए। तो जब कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी कामना वासना नहीं, इसका अंदर में क्या क्या आता है, क्या क्या कामना वासना का त्याग करना चाहिए, पहले क्या कामना वासना आता है मन में, फर्स्ट स्टेप कामना वासना क्या है, आपका कामना वासना क्या है, फर्स्ट स्टेप, अरे हाँ संसार में मेरा अच्छा मकान मिल जाएगा, अच्छा पत्नी मिल जाएगा, बैंक बैलेंस मिल जाएगा, ये सब कुछ नहीं, इस जीवन में मेरे को कुछ अच्छा खाना पीना मिल जाएगा, ये तो वासना फर्स्ट स्टेप वासना होता है ना, एक कामना होता है ना, इसको त्याग करना पड़ेगा। ये सब पाने के लिए एक पीछे नहीं पड़ना, इसको निष्काम बोलते हैं। उसे एक स्टेप और ऊपर जाओ, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अरे इस जन्म ना मुक्ति नहीं, मुझसे कोई नहीं। अरे इस जन्म तो अच्छा खाना पीना मिलता है, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? अच्छा खाना पीना मिलेगा ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अभी से पुण्य कर्म करके रखो, तो नेक्स्ट टाइम में दिशा मिलेगा। ठीक है, वो कामना वासना क्या होता है? स्वर्ग जाना। वो भी वो कामना को त्याग करोगे तो नेक्स्ट कामना वासना क्या है? नेक्स्ट स्टेप कामना वासना क्या है? संसार बंधन से मेरे को छुटकारा मिल जाए, मेरे को मुक्ति मिल जाए, ये जो कामना होता है। तो मुक्ति कई तरह का मुक्ति होता है, कई तरह का मुक्ति होता है, पांच तरह का मुक्ति होता है, साधुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति और सामीप्य मुक्ति, पांच मुक्ति होता है। जो लोगों ने सोचते हैं नहीं नहीं मेरे को इंद्रलोक में जाकर क्या फायदा है, फिर इधर जन्म लेना पड़ेगा, खीने पुण्य मर्तलोक विसंति, मेरे को मुक्ति चाहिए, तो पांच तरीका मुक्ति के लिए कोशिश करना। तो पांच तरीका मुक्ति में कौन सा मुक्ति अच्छा है, कौन सा मुक्ति मेरे को प्राप्त करना चाहिए? हाँ, कोई भी नहीं। पहले पहले साधुज्य मुक्ति होता है, तो साधुज्य का मतलब क्या है? हाँ, दो तरीके का साधुज्य होता है मालूम है, एक ब्रह्म साधुज्य होता है और एक ईश्वर साधुज्य होता है। ब्रह्म साधुज्य का मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, ईश्वर साधुज्य का मतलब भगवान नारायण का शरीर में लीन हो जाना। कौन सा अच्छा है? ये दोनों अच्छा है, तो ये ये, ये इसको छोड़ना, ये निष्काम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या छोड़ना, क्या वासना छोड़ना? इस जिंदगी में वासना को छोड़ना। नेक्स्ट स्टेप क्या वासना छोड़ना? स्वर्ग लोक जाना छोड़ना। नेक्स्ट स्टेप में साधुज्य मुक्ति को छोड़ना। ठीक है, साधुज्य मुक्ति अच्छा नहीं है, भगवान है तो लीन हो जाना अच्छा नहीं, वैकुंठ जाना वो की भौतिक वासना है, वो तो आध्यात्मिक वासना है ना, वैकुंठ जाना ये तो अच्छा है ना। अरे सालोक विष्णु लोक चले जाएंगे, ये तो बहुत अच्छा बात है ना, कोई कोई चाहते हैं भगवत धाम जाने के लिए, चाहते नहीं, सब लोग कम चाहते हैं भगवत धाम जाने के लिए। तो उधर भी गड़बड़ है, महाप्रभु ने सिखाते हैं कैसा, सब में गड़बड़ है। जीवन में लोगों ने जिसको श्रेष्ठ करके मानते हैं, अरे जीवन में सुख चाहिए, आशा कर्म करो, सब आशा कर्म करो, आशा कर्म, वो गड़बड़ है। मैंने पुण्य करो, नेक्स्ट लाइफ स्वर्ग जाए, वो भी गड़बड़ है। मैंने इसे इससे छुटकर पर मुख्य तक उसमें गड़बड़ है। मैंने मैं वैकुंठ साल जाऊंगा, वो भी गड़बड़ है। समझते हैं कितना अच्छा से एनालिसिस करते हैं। तो फिर वैकुंठ धाम चले गए आप लोग, अरे वैकुंठ धाम जाएंगे उसमें क्यों ठीक नहीं है, अरे तुम वैकुंठ धाम जाएंगे लेकिन भगवान को देख नहीं पाएंगे। वैकुंठ धाम जाने का मतलब नहीं तुम भगवान को पा जाएंगे, माता माता जी इतने बड़ा बड़ा आग करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आप लोग सब तो इंडिया में रहते हैं ना, हाँ इंडिया में रहते हैं ना, नरेंद्र मोदी के सब लोग देखे हुए नहीं, ऐसा ही वैकुंठ जाने से भी देखा नहीं पाएंगे, टीवी में देख पाते हैं ना, वैसा स्फूर्ति होगा हृदय में देख पाएंगे। कोई सोचते हैं अरे वैकुंठ में मेरे को स्वर्गलोक नहीं जाना चाहिए, मेरे को ब्रह्म साधुज्य नहीं चाहिए, मैं वैकुंठ लोक चले जाऊंगा, वो भी सफिशियंट नहीं है। उस उधर जाना वो भी निष्काम नहीं है, वो कंप्लीट नहीं, उसको पाने से भी अशांति शांति नहीं है। भगवान का वहां पर ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे, शास्त्रीय मुक्ति मिल जाएंगे, भगवान का वहां के रूप मिल जाएंगे, तब भी शांति नहीं मिलेगा। एक भक्त है वो अच्छा है वैकुंठ में, कौन सा मुक्ति अच्छा हो सकता है? ये पांच तरीका मुक्ति में कौन सा मुक्ति अच्छा हो सकता है? सामीप्य। तो भगवान के साथ में जो रहता है ना, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं मेरा जो भक्त होता है ना, दियो माना न गृहणती, मैं देने से भी नहीं लेता है, मैं जांचने से भी नहीं लेता है। एक पांच तारीख का मुक्ति, मेरा धाम आ जाओ, मैं जैसा ऐश्वर्य ऐसा रूप ऐश्वर्य प्राप्त हो जाओ, मेरा जैसा रूप ऐसा रूप प्राप्त हो जाओ, मेरा पास में रहो तुम। नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। भक्त इसको त्याग करते हैं। देखो तो निष्काम भक्त कितना दूर तक जाता है, इसको निष्काम बोलते हैं। और लोगों ने बोलता है मेरा कामना वासना नहीं, मैं देश के लिए करता हूं, मैं जाति के लिए करता हूं, इतना ही निष्काम सोचते हैं। लेकिन निष्काम का मतलब इस सब कामनाओं को अंदर से बाहर कर दो। रुपया पैसा मकान मिलेगा, सुखी बनूंगा, स्वर्ग जाके सुखी बनूंगा, मैं साधु जो मुक्ति प्राप्त करके सुखी बनूंगा, मैं वैकुंठ जाके सुखी बनूंगा, इस सब को कामना का त्याग करना, इसको निष्काम बोलते हैं। तो उसका प्रभाव क्या है? वैकुंठ से ऊपर क्या है? गोलक में क्या होता है? उसमें तो प्रेम ही प्रेम, वो अच्छा है ना? प्रेम का जो सुख अच्छा है ना, वो भी नहीं चाहिए। उसके बारे में चैतन्य चैतन्य में बताते हैं, जब ब्रज गोपियों ने भगवान की सेवा करते हैं ना, तो भगवान के पास में कृष्ण को तो प्रेम आता है, ठीक है ना? तो प्रेम आने से, तो प्रेम का लक्षण क्या होता है? अष्ट सात्विक विकार आ जाता है। अष्ट सात्विक विकार क्या मालूम है आप लोग को? क्या शरीर कांपेगा, और क्या होगा? आंख में आंसू आ जाएगा, और क्या होगा? स्टंड हो जाएगा। ये आठ तरीके का विकार होता है। तो गोपियों ने अच्छा से आए सजा के भगवान को आनंद देने के लिए, पंख में हवा देते हैं, तो प्रेम आ जाता है। तो ब्रज गोपियों ने क्या बोलते हैं, ए प्रेम तुम अभी थोड़ा दूर रहो, मरो नहीं चाहिए प्रेम। तो तुम आ जाता है तो मैं तो भगवान को ख्याल नहीं कर सकता हूं, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं स्टंड हो जाता हूं, मैं इतना अच्छा तरीके का मुख सजा कर आया हूं थोड़ा कृष्ण को आनंद देने के लिए, मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा तो मेरा मुंह तो असुंदर हो जाएगा, कृष्ण का आनंद नहीं मिलेगा। तो इस समय क्या होता है? तो प्रेम को भी बोले तुम थोड़ा रोको, अभी मेरा टाइम नहीं तुमको एंटरटेन करने के लिए। तो निष्काम का मतलब कितना श्रेष्ठ होता है, ये और एक स्टेप जानना पड़ता है। तो उसको भी बोलते हैं तुम रोको अभी नहीं चाहिए। तो निष्काम का मतलब होता है सिर्फ भगवान का सेवा करना, कुछ नहीं मिलना। प्रेम का जो आनंद उसको भी बोलते हैं तुम रोको, वो आनंद नहीं चाहिए। जीवन का लक्ष्य है प्रेमानंद। क्या है, क्या आनंद चाहिए? हर तीन तरह का आनंद मालूम है, जड़ आनंद, उसके बाद ब्रह्मानंद, उसके बाद प्रेमानंद, और उसके बाद कुछ है प्रेमानंद के बाद सेवानंद। समझ गए? कई तरह का आनंद होता है, जड़ आनंद भौतिक जगत में जो आनंद मिलते हैं सबको लगता, उसके बाद ब्रह्मानंद, उसके बाद प्रेमानंद, उसके बाद भगवान का सेवा करने से बहुत आनंद आएगा ना, ठीक है ना? नहीं तो इसीलिए मैं भगवान की सेवा करूंगा। निष्काम हुआ, ये तो निष्काम नहीं हुआ, ये सकाम हुआ, ये निष्काम नहीं हुआ। देखो सकाम को कितना दूर तक जाते हैं, तो लेकिन महापुरुष बताता है इतना डिटेल जाता है ना, मैं तो इधर ही खत्म कर देता हूं। ये शिक्षा का पूरा कभी नेक्स्ट सेशन करेंगे, शेष तक पहुंचेंगे। कितना ज्ञान गर्व भक्त बताता है, उधर पहुंच के भी बोलते हैं नहीं। उधर जब भगवान का कोई सेवा करते हैं तो भक्त का ये अनुसंधान नहीं, प्रेम से उतना अंध हो जाता है, उसको मालूम नहीं होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है। मैं भगवान का सेवा करता हूं, थोड़ा मेरे को भगवान का सेवा का सुख मिलेगा, ये सुख प्राप्ति के लिए सेवा करते नहीं। भगवान का सेवा करने से सुख मिलेगा, एक ज्ञान ही नहीं उसका, एक ज्ञान खो जाता है। इस सेवा सुख का ज्ञान भी नहीं, ये सिर्फ सेवा ही करता है, सेवा करके मेरे को सुख मिलेगा, मेरे को आनंद मिलेगा, इसका अनुसंधान भी नहीं होता है, ये सिर्फ सेवा ही कर जाता है, सिर्फ भगवान को सुख ही देता है, सिर्फ भगवान को आनंद ही देता है। और जब भगवान को बहुत आनंदित देखते हैं तो भक्त कैसा लगता है, भक्त क्या अनुभव करता है, वो ही असली आनंद है। इसीलिए बोलते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कौन सा कृष्ण भक्त शांत है, तब तक पहुंचना पड़ेगा, जब तक हम लोग उतना दूर नहीं पहुंचता है तब तक चित्त चांचल्य रहेगा। चित्त में क्या रहेगा, चांचल्य हिंदी है, चंचलता भाव रहेगा, चंचलता भाव रहेगा। ए मिलना इसको बोलते हैं स्व सुख वासना, आपका सुख का वासना, ये भौतिक वासना हो या आध्यात्मिक वासना हो, समझते हैं। कृष्ण सेवा का वासना है, लेकिन कृष्ण सेवा करने से मेरे को सेवा सुख मिलेगा, जब तक सुख प्राप्ति का वासना रहेगा तब तक वो निष्काम नहीं हो सकता है, वो सकाम भक्ति होता है। तो महाप्रभु का शिक्षा कितना गंभीर, उतना दूर तक महाप्रभु ने दिया। इसीलिए बोलता है कृष्ण भक्ति कैसा होता है, लास्ट सेंटेंस में बताऊंगा, स्व सुख वासना शून्य, समझते हैं हिंदी है, स्व सुख वासना शून्य, मुक्ति गंध कामना शून्य, मुक्ति का गंध का कामना का गंध भी नहीं, गंध भी नहीं रहना चाहिए, मुक्ति कामना गंध शून्य, कृष्ण सुख एक तात्पर्यमय सेवा, इसको चैतन्य चरितामृत में वर्णना करते हैं, कृष्ण सुख एक तात्पर्यमय सेवा, सिर्फ कृष्ण का सुख के लिए बस, इसका दूसरा कोई कारण ही नहीं। और लोगों ने तो हम लोग बोले पूछे, अरे हरे कृष्ण करेंगे, हरे कृष्ण करते पेट भरेगा, लोग सोचते हरे कृष्ण करने से पेट भरेगा मेरा, क्या हरे कृष्ण का पेट भरना है, ये हरे कृष्ण करने का क्या लक्ष्य है, देखो कृष्ण सेवा करके मेरे को सुख मिलेगा, वो भी ज्ञान में नहीं रहना चाहिए, वो भी ज्ञान में नहीं रहना, सिर्फ कृष्ण सुख एक तात्पर्यमय सेवा, जो सेवा का लक्ष्य एकमात्र होता है कृष्ण का सुख प्रदान करना, वो सबसे श्रेष्ठ महान होता है। तो मैं ये सब बताया आप लोग को, लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचिए जो काले आपको मिल जाएगा, ये हम लोग नहीं मिलने वाला है, ये फिलोसफी है हाँ, ये फिलोसफी इतना ही मालूम होना चाहिए, जीवन में इतना अंतिम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य पहुंचना है, इसको जानकारी करना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग थोड़ा ज्ञान होगा तो कभी ना कभी हम लोग थोड़ा लोभ आ जाएगा, इसलिए नहीं तो हम लोग शास्त्रों को देख कभी ना कभी हम लोग फंस नहीं जाएंगे, शास्त्र पढ़ते हैं कभी कभी कर्मकांड में फंस नहीं जाएंगे, ज्ञान में फंस नहीं जाएंगे, ध्यान में फंस नहीं जाएंगे, नहीं वैकुंठ जाने के लिए आशा में फंस नहीं जाएंगे, इसको हम लोग जानकारी होगा तो जो कुछ शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग ये मालूम होगा ये असली चीज नहीं है, मेरे को और थोड़ा आगे जाना चाहिए, और थोड़ा आगे जाना चाहिए, और थोड़ा आगे जाना चाहिए। तो इसे महाप्रभु ने रस सिंधु प्रेम रस का शेष सीमांत में पहुंचा दिए, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, जितना ही सब अशांत है। नेक्स्ट श्लोक, मुक्ता नाम अपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभा प्रसन्तात्मा कोटिशोपि महामुने। ये भागवत का एक श्लोक का उद्धृति देखे, इसको वो जो बताया ना, तो चैतन्य चरितमृत का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कृष्णदास को विराज गोस्वामी ने जो कुछ उपस्थापना करते हैं उसका पीछे पीछे शास्त्र का प्रमाण भी देते हैं। जैसे बता दिया ना, महाप्रभु ने बता दिए जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम ये सब कर ले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ये उनका भर्षण नहीं है, उनका शास्त्र तक समाज उसका हम लोग को समझाता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानां नारायण परायणां कोटिश्चुपि महामुने, हे महर्षि जो कोटि कोटि मुक्त और सिद्धों का बीच में जो नारायण परायण भक्त होता है वो प्रसन्नात्मा होता है, वो प्रसन्न होता है, सुदुर्लभ वो बहुत दुर्लभ होता है। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् जतत सिद्धाय तताम अपि सिद्धानां कश्चित् मां व्यतितत्त्वतः, बहुत दुर्लभ होता है। पहले तो दुर्लभ बोलाया था, इधर क्या बोलता है सुदुर्लभ। ऐसा भक्त नारायण परायण भक्त मिलना बहुत सुदुर्लभ होता है, क्योंकि नारायण जो नारायण पराभक्त होता है ना वो लोग निष्काम होते हैं, तो वो लोग निष्काम कब तक होता है ना, गोलोक वृंदावन जाने का कामना भी नहीं है लोग का। भगवत स्वर्ग नरक के अपवर्ग के स्वपि तुल्यार्थ दर्शन नारायण पराशर्ग कुतश्च न विभ्यति। तो नारायण परायण भक्त होता है वो लोग ना किधर भी जाने के लिए डरते नहीं, मेरे को स्वर्ग भेज दो, नरक भेज दो, मुक्ति दिला दो, कुछ भी दो। नारायण पराशर्ग कुतश्च न विभ्यति, स्वर्ग नरक के अपवर्ग के सभी तुल्यार्थ दर्शन। तो इसीलिए जो भगवान का भक्ति भक्त कितना श्रेष्ठ है, तो दो चीज महाप्रभु ने बताया, एक भक्ति कितना भक्त कितना दुर्लभ होता है और भक्ति कितना श्रेष्ठ होता है, सबको अतिक्रम करेगा। तो दो तरीके का भक्ति होता है महाप्रभु, कौन सा दो तरीके का भक्ति क्या होता है, क्या भक्ति है, एक भक्ति है और एक प्रेम भक्ति है, एक भक्ति लेने के लिए और एक भक्ति देने के लिए। तुम्हें पहले बताया ना हमारा दो भगवान होता है, याद है आप लोग को दो भगवान के बारे में बताया ना कभी, अरे इतना मंदिर सारी भारत में है तो सब कितना भगवान है ना, लोगों ने जाता है तो इसका नया मंदिर बनाते हैं क्यों, इसकल का भगवान बाहर का भगवान क्या फर्क है, अरे लोगों ने जाता है ना कुछ दे दो तो बाहर भगवान वो देने वाला भगवान है और ईश्वर का भगवान लेने वाला भगवान है, तो वो फर्क है। बाहर में लोग भक्ति सिखाता है वो भक्ति करने से भगवान से मिलेगा, आप प्रेम भक्ति करने से भगवान को देने पड़ेगा, मिलेगा नहीं खोएगा। तो भगवान जीवन में कुछ मिलना जीवन का लक्ष्य नहीं, खोना जीवन का लक्ष्य है भगवान। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना ज्यादा हमारा अनुग्रह नहीं हरी से धनम से नहीं, जिसको मैं कृपा करता हूँ ना सब ले लेता हूँ उनसे, डरना नहीं मत डरो। तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है, ये प्रेम भक्त में बहुत श्रेष्ठ होता है, इसको प्रेम भक्त बोलता है। प्रेम आनंद, आनंद किससे, भौतिक जगत में आनंद किससे आता है, लेने से, पाने से आनंद आता है ना, कितना मेरे को मिलता है उससे आनंद आता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में कितना मैं देता हूं उसमें से आनंद आता है, लेने से आनंद नहीं। अच्छा, लेने का आनंद और देने का आनंद, ये दोनों में क्या फर्क है, लेने का आनंद किससे आता है और देने से आनंद किससे आता है, देने से आनंद प्रेम से होता है, लेने का आनंद काम से होता है। लेने से जो आनंद आता है ना वो काम से होता है, काम, और देने का आनंद किससे होता है, प्रेम से होता है। काम और प्रेम, एक प्रेम का प्रतिबिंब होता है काम। तो मैं बोला पहले बताया हमारा धर्म क्या धर्म है, क्या धर्म हम लोग पालन करते हैं, ये सनातन धर्म नहीं है, ये प्रेम धर्म है, ये प्रेम धर्म है। अरे जगत में क्या धर्म पालन करता है, ये काम धर्म है। काम धर्म का लक्ष्य क्या है, कितना मेरे को मिलेगा, अब प्रेम धर्म का क्या लगा है, कितना मैं दूंगा, कितना मैं दूंगा, ये प्रेम का लक्ष्य होता है। ऐसा भी भौतिक जगत में देखे ना किससे ज्यादा आनंद, ऐसा प्रिंसिपल तक मेरे को तो देता है, मैं इसको प्यार करता हूं। लेकिन आप अच्छा से स्क्रूटिनाइज करेंगे, देखेंगे आप बच्चे को प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, तो बच्चे से कुछ, बच्चे को जब कुछ देते हैं तो आनंद लगता है ना, ये प्रेम का लक्षण होता है, देने से आनंद होता है ना। आप सोचते हैं जैसे उसका पॉकेट खाली करूंगा, सोचते हैं नहीं, वो काम का लक्षण होता है, मेरे को मिल जाए नहीं। और एक फर्क होता है, भौतिक जगत में हम लोग सब सबका पीछे पड़ा है पॉकेट खाली करने के लिए, हाँ, पिता माता भाई बहन सब पीछे पड़ा है, कितना मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भक्त और भगवान का बीच में कंपटीशन चलता है, भक्त को सोचते हैं मैं कितना भगवान को दूंगा, और भगवान सोचते हैं मैं कितना भक्त को दूंगा, ये कंपटीशन चलता है। जो प्रेम से होता है ना, ये तो काम से होता है, काम से होता है इसीलिए मैं कितना मिलेगा मेरे को, हाँ, प्रेम से होता है मैं कितना दूंगा। अब भक्त सब कुछ देने से भी सोचते मैं भगवान को कुछ नहीं दे पाया, भक्त सोचते हैं, और भगवान सब कुछ देखा भी मैं कुछ नहीं दे पाया, एक प्रेम का लक्षण होता है। और काम का लक्षण क्या होता है, थोड़ा देने से मैं इतना दिया तुमको, मेरे को तुम क्या देता हो, हाँ, भौतिक एक काम का लक्षण होता है, मैं इतना दे दिया। किंतु आध्यात्मिक जगत में ये ऑपोजिट, भगवान के पास जब भक्त जाता है, भगवान बोले तुम मेरे लिए इतना किए, मैं कुछ प्रतिदान देना चाहता हूँ, भगवान सोचते हैं हाँ मैं तुमको कुछ दूंगा, तो भगवान सोचते हैं इसे बताया गया, जब भक्त वापस जाएगा ना, भगवान बोले हे प्रिय भक्त मैं तुमको क्या दूंगा, तुम मेरे लिए कितना परिश्रम किए, कितना लांछित हुए थे, कितना असम्मान, कितना कष्ट किए, कितना रात जागते रहे, सब भगवान रिकॉर्ड कर रखते हैं। भगवान बहुत कृतज्ञ होते हैं, ये हमारा जगत में कृतज्ञ नहीं है, सब रिकॉर्ड कर रखते हैं। तो भक्त वापस तुम मेरे लिए इतना किए, मैं तुमको क्या प्रतिदान दूंगा, तो भगवान सोचते हैं तुम्हारे लिए इतना किए मैं तुमको इंद्र पद दे दूंगा, ठीक है ना, हाँ। तो बोलने के बाद भगवान फिर मुख नीचे करते हैं, अरे मैं क्या कर दिया, ये भक्त मेरे लिए जा क्या है? इंद्र पद देने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं। भगवान आपको और खूब लज्जित होता है, हाँ? नहीं नहीं मेरा प्रिय भक्त तुम मेरा लिए इतना किए, मैं प्रतिदान तुमको इंद्र पद कुछ भी नहीं, मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा। बोलने के बाद भगवान फिर लज्जित, मैं क्या भूल कर दिया, ये मेरे लिए जो कुछ किया इसका प्रतिदान मुक्ति में कुछ भी नहीं, मैं तुमको तुमको अष्ट सिद्धि दे दूंगा। फिर भगवान अष्ट सिद्धि में कुछ भी नहीं, ये तो बैकुंठ दे दो, भगवान मन में जो कुछ आता है देने के लिए भगवान आपको वो घट्टा हो जाता है, घट्टा कम हो जाता है, कम होता है भगवान कुछ नहीं देने के लिए। तब फिर बाद में भक्त भगवान ने जो कुछ दिया तो भगवान क्या देखे शोध कर पाएंगे, प्रेम भगवान के पास नहीं, प्रेम तो भक्त के पास है, प्रेम तो भगवान मांगते हैं। तो दो चीज मन के, प्रेम भगवान के पास नहीं, प्रेम भक्त के पास है, प्रेम भगवान को भक्त देते हैं, भगवान आनंद लेते हैं। तो भगवान भक्त को क्या देते हैं, आपको देते हैं, हाँ। तो भक्त क्या पाता है, भगवान तो प्रेम, भगवान जो भक्त जो भगवान को प्यार करता है वो प्रेम को ग्रहण करके उनका आनंद पाता है, वो प्रेम का भिखारी होता है। तो भक्त को क्या मिलते हैं, तो भगवान सेवा, अरे भक्त को भगवान मिलते हैं। भगवान ने बताया, गोपियों को बताया ना, न पारे अहम निरबद्ध संजोजा सो साधु कृत विबुधा से विवाह मा भजन दुर्जय घ श्रृंखल संवृश्य तदवह प्रतिजात साधु न। ये ब्रज गोपिका है, मैं भगवत गीता में बताया जे जथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि हम, जो मेरे लिए जितना करते हैं मैं उसको प्रतिदान दे दूंगा। लेकिन तुम्हारा प्रेम भक्ति इतना महान श्रेष्ठ है तो मेरा प्रतिज्ञा अभी भंग हो गया, मैं जो शपथ किया था ना जे जथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, न पा रहे समझते हैं, मैं नहीं पारूंगा मैं नहीं सकूंगा। लेकिन भगवान का डिक्शनरी में मैं नहीं सकूंगा ये वर्ड नहीं करना चाहिए,
आई एम अनेबल टू डू, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये भगवान हो सकते हैं? अरे भगवान का मतलब तो सब कुछ कर पाएंगे, तब भी भगवान बोलते मेरे देखिए एक शब्द मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, ना माँ भजन दुर्जय गृह श्रृंखला समृष्ट, मेरा भजन करने के लिए तुम्हारे दुर्जय गृह श्रृंखला को छेदन करके आ गए, सिर्फ मेरा आनंद देने के लिए मैं ब्रह्मादि का लाइफ टाइम कोशिश करूंगा, तुमको प्रतिदान दे नहीं पाऊंगा। इसलिए वो ब्रज गोपी का प्रतिजात साधना, तुम्हारा सेवा में ही तुम संतुष्ट रहो, इसलिए मैं आपको तुम्हारे हाथ में समर्पण करता हूं, मैं मेरे को तुमको दे दिया, अभी मेरे को लगे तुम जो इच्छा वो करो, समझते हैं? ये बोलते हैं भक्ताधीन भगवान, भगवान इतना भक्त का अधीन हो जाता है, कब अधीन होता है, ऐसा प्रेम से अधीन होता है ना, इसलिए भगवान बोलते हैं ना अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र बुद्धिज साधु ग्रस्त हृदय भक्त विभक्त जनप्रिय, अहम भक्त पराधीन, मैं स्वाधीन नहीं हूं, मैं पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त परतंत्र हूं, भक्त मेरे लिए ऐसा करता हूं तो भगवान संभव, भक्त मैं तुमको देने के लिए कुछ नहीं, तुम मेरे को ले लो, मेरे को लेके जा करते हो करो, कितना श्रेष्ठ जो अनंत के ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं उसमें कौन नियंत्रण करते हैं? हाँ, इसीलिए प्रभुपाद ने बोलते हैं अरे सब लोगों ने भगवान के साथ कंपटीशन करते हैं, भगवान के साथ लीन हो जाएंगे, भगवान के साथ एक बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे, जितना सारी कोशिश होता है कर्म कांड ध्यान कांड सबका लक्ष्य की है, मैं भगवान के साथ बराबर बन जाऊंगा, भगवान से लीन हो जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा। फिर प्रभुपाद बोलते हैं अरे तुम भगवान के साथ समान बनने के लिए क्यों कोशिश करते हो, हमारा पास पंथा है उपाय है, मैं तुमको भगवान से बड़ा बना दूंगा, तो भगवान से बराबर क्या बनेंगे, भगवान से बड़ा बनाऊंगा, कोई कौन चाहते हैं भगवान से बड़े बनने के लिए, कौन चाहते हैं भगवान से बड़ा बनने के लिए, कोई नहीं चाहते ना, कोई नहीं चाहता है, कौन भगवान से बड़ा बनने के लिए चाहते हैं, कोई चाहते नहीं, तो आपका बुद्धि आपका दिमाग ज्ञान अधूरा रह गया, इसीलिए आप लोग बोलते हैं मैं भगवान से बड़ा बनने के लिए चाहता नहीं, आपका बुद्धि अधूरा है इसीलिए। अरे भगवान से बड़ा कौन है, भगवान से बड़ा कौन है, तब भक्त बनना चाहते नहीं, तो बुद्धि तो अधूरा रह गया, कंप्लीट माने तब भी कंप्लीट माने, आप लोग साहस कर नहीं पाते हैं, भगवान से बड़े होने का हिम्मत किसका है, किसका हिम्मत हो सकता है, तो प्रेमी भक्त का ऐसा हिम्मत हो सकता है, वो प्रेम से इतना अंध हो जाता है भगवान को भगवान करके मान नहीं पाता है, भगवान को जान नहीं सकता है, आप लोग क्यों हिम्मत नहीं होता है भगवान से बड़ा उनके बन जाऊंगा, प्रेम भक्तों के लिए भगवान को बड़ा बनेगा, उनका लाठी लेके शासन करेंगे, कंधे पर चढ़ जाएंगे, ये कुछ बात नहीं है, वो प्रेम भक्ति इतना ऊंचा स्तर का होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारे पास उपाय है, ये प्रेम पर लक्षण होता है, ये प्रेम भक्ति लक्षण होता है, तो वो भगवान से बड़ा बना जाएगा, लेकिन प्रेम से, काम से नहीं, प्रेम से भगवान को। प्रभुपाद बोलते हैं कैसे बड़ा बनाएगा, कैसे तुम, हाँ भगवान बोलते भक्त बड़ा है ना, भगवान बड़ा है, कौन बड़ा है, भक्त बड़ा है, तो भक्त को तो भगवान बोलना चाहिए, भगवान तो सबसे श्रेष्ठ है ना, तो भक्त बड़ा है तो भक्त को भगवान बोलना चाहिए। प्रभुपाद बोलते नहीं, वो दृष्टांत देते हैं, एक पिता है उनका बच्चा है, ठीक है, तो पिता बोलते बच्चा को छोटा को तुम आज रेसलिंग करूंगा, मैं तुम्हारा साथ रेसलिंग करूंगा, तो बच्चा और पिता के साथ रेसलिंग होता है, तो कभी कभी क्या करता है ना, पिता बच्चा को नीचे गिरा देता है, और पिता कभी कभी क्या करता है बच्चा को उठा के ऊपर रखता है, ओ मैं हार गया बोलते हैं, करते हैं ना, तो एक प्रेम से होता है। तो भक्त बड़ा नहीं है, लेकिन भगवान भक्त को बड़ा बनाता है, क्यों बड़ा बनाता है, क्यों भगवान भक्त के पास छोटा हो जाता है, कौन भगवान को भक्त से छोटा बनाता है, हाँ प्रेम। तो कितना बड़ा धर्म है, देखो ये है धर्म,
इसको बोलते हैं धर्म, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये धर्म नहीं है, इसको गलत धर्म है। इसीलिए बोलते धर्म प्रजित पैतव, ये चीटिंग, ये चीटिंग धर्म है। धर्म अर्थ कामुक, ये चीटिंग धर्म होता है। तो महाप्रभु ने अभी तक ऐसा बताया, तो इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे तो कैसा एक भक्ति तो श्रेष्ठम मालूम हो गया। दो चीज भक्ति बारे मालूम हुआ, क्या दो चीज मालूम हुआ, क्या दो चीज मालूम हुआ आपको भक्ति के बारे में? हाँ, क्या महाप्रभु ने बताया भक्ति के बारे में? जो चीज बताया भक्ति के बारे में, प्रेम भक्ति के बारे में दो चीज बना बताए, प्रेम भक्ति के बारे में दो चीज बताए, प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति कितना दुर्लभ है ये विषय को बताए पहले। हाँ, क्लासिफाई करके करके, हाँ, अनंत जीव है, स्थावर जंगम है, तलतर भूतर है, कर्मनिष्ठ है, ज्ञाननिष्ठ है, मुक्त है, उसमें सुदुर्लभ कौन है? भक्त, ठीक है, दुर्लभ। उसके बाद बताए एक कितना श्रेष्ठ है, भक्ति मुक्ति सिद्धि बताए भक्त। तो अभी तो मालूम हो गया और बहुत दुर्लभ है, बहुत श्रेष्ठ है। तो नेक्स्ट कैसा प्राप्त होगा, एक कैसा प्राप्त होता है? अब प्रेम भक्त का नेचर क्या, वैरायटी प्रेम भक्ति होता है। प्रेम तो मालूम हुआ, आदौ श्रद्धा होता है ना, मालूम है आप लोग को श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, प्रेम के बाद मालूम नहीं, उसके बाद क्या है इस पर लिखा है, प्रेम का वैचित्र, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इतना क्लासिफिकेशन। इसको बोलते हैं विज्ञान, ये विज्ञान है, ये असली विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है। आप लोग पढ़ेंगे तो बाद में सब समझ पाएंगे इसका। तो कुछ प्रश्न है जो कुछ बताया आप पूछिए।
जैसे आपने बताया पहले वेद, उसके बाद में दर्शन युग, उसके बाद में पुराण, तो ये ध्यान युग किधर में है?
ध्यान के बारे में ऐसा नहीं, लेकिन देखिए जो ध्यान करता है निराकार ब्रह्म के ध्यान करता है, तो परमात्मा वो बीच में आता है। हाँ, उसके ध्यान का युग नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, नहीं। पौराणिक युग के बारे में बताया जो पुराण में लिखा हुआ, सकाम भक्ति के बारे में, योगी ध्यान के बारे में बोलते हैं, मैं जिधर पढ़ा हुआ सुना उसमें इंक्लूड नहीं है। जैसा महाप्रभु ने राय रमन के साथ जो कथोपकथन होता है उसमें ध्यान नहीं, परमात्मा का पेपर लिखा नहीं हुआ,
तो
सिद्धि है।
हाँ।
सिद्धि है, तो इस सिद्धि के बारे में थोड़ा बता दूंगा। तो ध्यान से, जो ध्यान से देखिए कर्म, ज्ञान और ध्यान होता है, तो और भक्त चार तरीके होता है, चार में दो होता है, एक हर में दो दो होता है। कर्म में कर्मकांड होता है, कर्मयोग होता है, समझते हैं? कर्मकांड आपको कर्म जगत में फंसा देगा, और कर्मयोग वो अच्छा है, वो भक्ति लाइन में ले आएगा, ठीक है। तो ज्ञान दो तरीका होता है, ज्ञान कांड होता है और ज्ञान योग होता है। ज्ञान कांड से आप निराकार ब्रह्म को उपासना करेंगे, इसको निर्भेद ब्रह्म ज्ञान में भगवान से अभिन्न ना हो। अब ज्ञान योग क्या होता है, मैं भगवान का दास हूं, एक ज्ञान योग होता है, असली ज्ञान योग होता है। और ध्यान में से भी ऐसा होता है, जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग दो रास्ता होता है, कोई ध्यान करते हुए वो योग सिद्धि में फंस जाता है, और कोई ध्यान करके परमात्मा को उपलब्ध करता है। तो कर्म, ज्ञान, ध्यान में दो मार्ग होता है, एक उत्कृष्ट होता है और निकृष्ट होता है। कर्म में निकृष्ट होता है कर्मकांड करना, उत्कृष्ट होता है कर्मयोग करना। ज्ञान में निकृष्ट होता है ज्ञान कांड करके निराकार ब्रह्म को प्रसन्न करना, और ज्ञान में उत्कृष्ट होता है मैं भगवान का दास हूं, एक ज्ञान योग होता है। अच्छा, ध्यान में भी ऐसा है,
कोई ध्यान करके अष्ट सिद्धियों के पीछे पड़ जाता है, वो भटक जाता है, और कोई इसको छोड़ के नहीं परमात्मा को उपलब्ध करता हूँ हो जाता है। भक्ति में भी उसे होता है, दो तरीका होता है, कोई सकाम भक्ति करके भगवान को उपासना करता है लेकिन भगवान को मानता है, कोई निष्काम भक्ति प्रेम भक्ति करके भगवान को देता है, समझता है। ये चार पंथ होता है, कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति। लेकिन ये हर उपाय में भी एक उत्कृष्ट एक निकृष्ट होता है, उसको भी समझना पड़ता है लोगों को, ठीक है। और कुछ प्रश्न है माता जी को? कुछ प्रश्न है? ये थोड़ा कठिन है मैं समझता हूँ, आप लोग इतना आनंद नहीं आता है जैसा कथा करने से आनंद आएगा, लेकिन आप लोग याद नहीं रहेगा, ठीक है, याद नहीं रह पाएंगे तो समझ पाते हैं तो यथेष्ट है, दो चार बार सुनेंगे और सुस्पष्ट होगा, और समझ नहीं पाता है तब भी ठीक है, सुनते रहिए, क्योंकि ये जो महापुरुष ने सिद्धांत दिए हुए इस सिद्धांत को मनुष्य के पास पहुंचाने पड़ेगा, लोगों को समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों ने अज्ञानी होकर रहेंगे। इसलिए आप लोग सबको अच्छे से समझ के महापुरुष के शिक्षा का शेष सीमांत में पहुंचा के लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना पड़ेगा। माता जी अंत में कोई हाथ उठाए थे? हाँ प्रभु जी। हाँ मैंने तो बताया ना, सुनते रहे सिर्फ, हम सुनते रहे, ऐसा चीज है। ले जैसा मैं सुनता हूँ पीएचडी के बारे में, तो मैं 8th क्लास पढ़ता हूँ ना, 8th क्लास स्टडी करता हूँ, लेकिन पीएचडी के बारे में कुछ है ऐसा चीज है। तो हम लोग अभी 10 भाव में सेवा करते रहेंगे, दास है, सखा है, वात्सल्य है, मत्सल श्रेष्ठ है, लेकिन सब में दास भाव रहता है, दास भाव कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। इसलिए मैं बताया ना, सब कुछ सुनते रहेंगे लेकिन भगवान का नाम में मग्न रहिए, भगवान नाम करते रहिए, भगवान नाम करके भगवान का सेवा करते रहेंगे तो आस्ते आस्ते अंदर से ये भाव जागेगा हम लोग का। तो मैं जैसा बताया, इसके बाद में जो कुछ बताएंगे तो ये मनुष्य शरीर में हम लोग प्राप्त कर नहीं पाएंगे, वो सिद्ध स्वरूप में प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग सुनते हैं सिद्ध स्वरूप में ऐसा चीज है, ये निष्काम है, ये श्रेष्ठ है, ये ज्ञान होना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, क्या प्रश्न है बोलो। बहुत दूर है,
बहुत दूर होता है,
हाँ दूर होता है प्राप्त करने के लिए। हाँ
जब हम हमारे अभी का स्थिति को जब याद आता
है, हाँ ये तो नहीं मिलेगा वाला ये बोलता है, आप लोग जो आप तो बताता है ये दुर्लभ है, इतना दूर है जो हमारा जो स्थिति है, मैं सोचता हूँ ये तो उधर पहुंचने को संभावना ही नहीं है। ये सही बात है, ये सही बात है, उधर पहुंचना संभव नहीं है और मिलना चीज नहीं है, एक जुग जुग में मिलना चीज नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये मिलना चीज नहीं है, ये भगवान का एक, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार ही इसके बारे में ये संदेश भगवान जीव को देते हैं। सत्य तृत्य द्वापर कली हजारों बार में एक बार महापुरुष आके ये संधान देते हैं। इसीलिए शास्त्र में बताया, चिर अदत्त निजगुप्त बीतम, एक कभी भी नहीं दिया गया, इनका गुप्त संपद है, महापुरुष करुणा करके देते हैं। और महापुरुष बोलते तुम मत सोचो, इसको प्राप्त करने का बहुत आसानी है, तुमको बहुत बड़ा ज्ञानी बनना जरूरत नहीं है, ध्यानी बनना जरूरत नहीं है, जोगी बनना जरूरत नहीं है, तुम्हारा सरल मन में सिर्फ मेरा नाम करो, हरि नाम करो, जब तक पुराण प्रमाण देखना नामेरे समान नहीं, नामे रति हले प्रेमेरे उदय प्रेमेते हरि के पाए। जितना पुराण वेद संधान करो, नाम का समान कुछ भी नहीं, नाम से रति होने से प्रेम होता है। तो हम लोग सरल मन में नाम करेंगे तो प्राप्त होगा।
लेकिन लोग भक्तों में महाप्रभु महाराज हम लोग को बताया चांद हरे कृष्ण बी हैप्पी गो बैक टू गॉड हैंड भगवान नाम लेकिन अंदर में कुछ ये रूल करो वो रूल करो ये फिल्म में दिमाग गुम हो जाता है. लेकिन प्रोसेस इज सिंपल पर वी आर कॉम्प्लिकेटेड. हम लोग सिंपल नहीं है इसलिए प्रोसेस काम नहीं करते हैं. इसलिए हम लोग बहुत कोशिश करना पड़ेगा कैसे हम लोग जीवन को थोड़ा सिंपल करेंगे. सिंपल होगा तो क्लिक क्विकली ये महाप्रभु प्रेम देते हैं बहुत जो अधम लोग का प्रेम प्राप्त होता है. मैं तो जाता हूँ मैं ट्राइबल प्रेसिंग शुरू किया. ट्राइबल लोग इतना सिंपल है कोई प्रश्न नहीं मुझे बोला सिंपल मन में बस हरिनाम शुरू कर देते हैं उन लोग को ज्यादा मिलेगा. और हम लोग ये प्रश्न है वो प्रश्न है ये संदेह है वो संदेह है तब तुम बैठे रहोगे घर. मैं सोचता हूँ कर्मियों के लिए नहीं ये योगियों के लिए नहीं ये ज्ञानियों के लिए नहीं. मैं जितना पढ़ता हूँ मैं उपलब्धि होता है. तो महाप्रभु आए ना ब्रह्मा और दुर्लभ वस्तु सबसे जो पतित है महाप्रभु ढूंढते हैं मोमबत्ती लेकर सबसे पतित कौन है जब उनको ढूंढा ये बहुत अज्ञानी हो सरल मन में है हरे कृष्ण देने को मिलता है. तो हम लोग कोशिश करना चाहिए जीवन में मन को कैसे सरल करेंगे पूर्ण विश्वास में हरिनाम करेंगे तो आसानी से मिलेगा. कभी कभी मन में आता है मिलेगा नहीं मिलेगा तो ऐसा करो मिलने के लिए कोशिश मत करो. मेरे को अभी मिलेगा ये भी निष्काम नहीं होगा कोशिश करते ये सकाम हो जाएगा. मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो निष्काम नहीं तुम मिलने की कोशिश कर नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा जो भगवान तुम जो करते हो करो. प्रभुपाद ने बताया मैं करूंगा भाष्य सिंपल बॉटम लाइन जो कुछ करता है करो एक बॉटम लाइन रखो. बॉटम लाइन क्या है प्रभुपाद ने बताया तुम चार नियम पालन करो 16 नाम जप करो बस मेरा जिम्मेदारी है तुमको भगवान के पास पहुंचा देना. तो ये जो सोचता है मैं इतना छोटा हूँ मेरे को प्रेम भक्ति मिलेगा ये भी कोशिश मत करो. प्रेम भक्ति मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसका अनुसंधान मेरा नहीं. प्रभुपाद ने बताया 4 बजे मंगल आरती करो प्रसाद पाओ 16 माला जप करो प्रचार करो जाने देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश बस मृत्यु नहीं करते रहूंगा. क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा बस भगवान को देखने दो. इतना ही तो हम लोग कर पाएंगे ना नहीं कर पाएंगे. हाँ ये तो आसानी है ना भगवान का हाथ में छोड़ दो. मैं इतना ही भगवान ने बताया मैं करता हूँ बस सिंपल समझते हैं. नहीं तो नहीं ठीक है ये भगवान का चीज है भगवान नहीं होगा क्या. यस जय श्री प्रभुपाद की जय चरतामृतम की जय परमानंदे. मेरा लाइफ में मैं क्या करता हूँ मेरा लाइफ हर कल हार्डशिप में जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंग्जाइटी सब कुछ. लेकिन बॉटम लाइन यू कीप फॉर चैंटिंग होली नेम टेकिंग प्रसादम सिंपल भावना रखो और कॉम्प्लिकेट वे में काम करो. प्रचार के लिए संसार चलाने के लिए जो कुछ करना पड़ता है उसको करने दो. बॉटम अंडरस्टैंडिंग को इंटैक्ट रखो तब अच्छा होगा. और एक चीज देखिए लोगों ने हम लोग सोचते हैं भगवान का भक्त बन जाने से सब कुछ खूब आसानी हो जाएगा. ये तो भगवान का भक्त बनने का लक्ष्य नहीं है. प्रॉब्लम भी रहेगा समस्या भी रहेगा लेकिन ये भगवान के लिए क्या जाता है वो प्रॉब्लम और समस्या हमको शुद्ध करेगा. तो कॉम्प्लिकेशन ही शुद्ध करेगा करते रहे. ये हम लोग तो सोचते हैं यार हम लोग साधु बन के थोड़ा शांत पर रहेंगे लेकिन तो बहुत अशांति है इधर. साधु बनने के बाद अशांति का संख्या बढ़ जाता है. इसलिए राधानंद महाराज ने बताते हैं भक्त का लक्ष्य नहीं शरीर का सुख मिलेगा मन का शांति मिलेगा ये आत्मा का आनंद के लिए भगवान के लिए ही ये जो बात बताता था
ना भगवान का जितना भक्त बने ब्रजवासियों से शुरू करके रामचंद्र का फैमिली में गौरांग और कुछ का प्राइम में सुख नहीं था शांति भी नहीं था तो इसलिए एंग्जायटी भगवान को लेने के लिए अच्छा है इज गुड दैट प्योरीफाइज अस। तो देखिए भगवान के लिए एंग्जायटी नहीं लेंगे तुमको किसी लिए तो एंग्जायटी लेना ही पड़ता है ना यू आर नॉट फ्री फ्रॉम एंग्जायटी लेट अस टेक बट एंग्जायटी इतना एंग्जायटी होकर भाग जाएंगे भक्ति छोड़ के वो अच्छा नहीं है कुतरा छोड़ के भागो ये अच्छा नहीं सो यू कंट्रोल योर सेल्फ आज मच ऑफ एंग्जायटी कैन टेक यू टेक दैट मच एंग्जायटी डोंट टेक सो मच एंग्जायटी दैट यू हैव टू रन अवे नॉट लाइक दैट साधन हैज टू बी बैलेंस्ड एंग्जायटी हैज टू बी बैलेंस्ड सो यू टेक एंग्जायटी थिंकिंग दैट आई एम डूइंग फॉर कृष्णा इज नॉट फॉर मी मैं तो ऐसा सोचता हूँ जितना फैसिलिटी मिलेगा सेवा इतना सेवा करूंगा फैसिलिटी नहीं है बस हरे कृष्ण करूंगा हो गया हाँ एंग्जायटी मिलेगा पैसा मिलेगा मकान मिलेगा तो बढ़ते रहेगा तुम भेजोगे तो बढ़ेंगे नहीं कर कुछ नहीं तो हरे कृष्ण करेंगे जब तक मिलते हैं तब छोड़ के हरे कृष्ण करने से भगवान सोचेगा रे तुम हरे कृष्ण करते मेरे लिए कुछ करते नहीं क्योंकि हरे कृष्ण करने का 24 आवर्स हम लोग का ऐसा समय टाइम आया नहीं हम लोग रजोगुण है तमोगुण है सत्वगुण है तो गुण को हमको काम में लगाना पड़ेगा तो मैं कभी कभी सोचता हूँ जैसा राधा गोविंद महाराज राधा गोविंद महाराज कुछ एंग्जायटी नहीं है मैनेजमेंट नहीं है फिर कथा करते आनंद में रहते हैं कभी कभी मेरा तो बहुत एंग्जायटी है मैनेजमेंट में ओह महाराज का माफी फंस बहुत अच्छा रहेगा लेकिन मैं ऐसा सोचूंगा तो वो भक्ति नहीं होगा तो मैं सुख के लिए करता हूँ मैं सुख के लिए करता हूँ लेकिन मैं सब छोड़ के महाराज का माफी करूंगा मैं रह नहीं पाऊंगा क्योंकि उनका स्तर डिफरेंट है मेरा स्तर डिफरेंट है तो जो स्तर मैं उनको इमिटेट करूंगा तो अच्छा नहीं है मेरे लिए एंग्जायटी लेने पड़ेगा ये काम करना पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा रजोगुण तमोगुण को भगवान के सेवा में लगाना पड़ेगा तो लगाते हुए वो प्रभाव से मुक्ति मिलेगा तब उस स्तर में जाकर हम लोग भागवत कथा कर घूम रहे समझते हैं इसलिए डोंट गिव अप टेक ऑलवेज रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ प्रभुपाद ने कितना एंग्जायटी लिए गुरु महाजन ने बोलते हैं सब आचार्यों ने एंग्जायटी एंग्जायटी लिए गुरु महाजन बोलते हैं महाप्रभु एंग्जायटी लेकर आए बास्केट फुल आचार्य लोगों ने आचार्य का काम क्या है महाप्रभु का एंग्जायटी को थोड़ा फ्री करना लोड कम लेना लोड कम लेना प्रभुपाद ने लोड कमाया पूर्वाचार्यों का तो प्रभुपाद के डिसाइपल ने प्रभुपाद का लोड कमाया तो प्रभुपाद डिसाइपल का डिसाइपल हम लोग उन लोग का लोड कमाना पड़ेगा हम लोग तुम लोग एंग्जायटी लो हम लोग हरे कृष्ण करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है ना उन लोग का एंग्जायटी क्या है जीव को उद्धार करना तो बैलेंस करना पड़ेगा हमारा लक्ष्य है गो बैक टू गॉड हेड किंतु गो बैक टू गॉड हेड का लक्ष्य है भगवत प्रेम पाना प्रेम लाना जब मैंने जैसे बताया ना शास्त्र में लिखा है तुम्हारा पुण्य कर्म करो ये करो कुछ लोग के लिए तो नहीं नहीं ये पुण्य कर्म थे तुम ज्ञान करो कुछ लोग के लिए नहीं तुम ध्यान कर परमात्मा को दर्शन करो कुछ लोग के लिए नहीं नहीं परम दर्शन करना यथेष्ट नहीं भगवान का सेवा करो भगवान का पाने के लिए तो जाता है दिस पार्ट ऑफ इट गोइंग बैक टू गॉड हेड टू गेट लव ऑफ गॉड हेड असली गोल तो होगा भगवान तुम मेरे को भगवत धाम ले जाओ जिधर भी रखो तुम्हारे प्रति मेरा थोड़ा प्रेम ही रहेगा इतना ही वो भक्त का इतना ही रहेगा वो चाहेगा नहीं गोलक वृंदावन में लो लेकिन देखिए जब उस स्तर में जाते हैं वो लोग आशा नहीं लेकिन हम तो छोटा है ना हम लोग को थोड़ा आशा रहेगा हाँ गोलक वृंदावन जाएगा रहेगा ये सब करेगा इतना निष्काम हम लोग कॉपी देम किंतु उस स्तर में जाने से ऐसा होता है भक्त का हालत उसके बारे में बताते हैं जब भक्त उस स्तर में जाता है तो भक्त का और कुछ भाषा नहीं रहता है प्रेम भी नहीं लेकिन हम लोग का सिचुएशन इज डिफरेंट यू अंडरस्टैंड सो वी कैन वी शुड थिंक टू गो बैक टू गॉड है वी शुड थिंक टू गेट फ्री फ्रॉम फैमिली लाइफ बॉन्डेज इन आवर स्टेज शुड थिंक बट शुड नो एट वन लेवल दीज थिंग्स आर ऑल इनसिग्निफिकेंट अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए ना ठीक है
ये
बाहर के लोग कैसे अट्रैक्ट करेंगे? अच्छा से प्रसाद खिलाओ, हरिनाम करा, बोलो तुम्हारा सब कल्याण होगा। हाँ हाँ, बाहर साधारण लोगों को टेल देम बेसिक थिंग्स, व्हाटएवर भगवत गीता से, लेट देम नो देयर नॉट दिस बॉडी आत्मा। मन में उद्वेग होता है, उद्वेग कम हो जाएगा। क्यों मन में उद्वेग होता है? तुम चाहते हैं ज्यादा चीज, कामना होता है, इसलिए कष्ट पाते हैं। तुम कामना ज्यादा मत करो। सिंपल एग्जाम्पल देखा, देखो तुम 10 तला बिल्डिंग चाहते हो लेकिन एक खट का ऊपर सोते हो, तुम क्या फायदा होता है? टेल देम मेनी सिंपल थिंग्स। Process is very simple, to chant the holy name under the shelter of Vaishnavas, Guru and Vaishnava. Very simple process. Or iska alternative kuch nahi. Desire, we should have intense desire. By hearing, we will develop desire. And we have to have target how to develop our attachment for the holy name. That is very important. Wo nahi aayega to kuch nahi hoga. और हम लोग तो अटैचमेंट एकबारे ही नहीं, नींद नहीं आता है तब जपमाला धरो, नींद जल्दी में आ जाता है, ये हालत है हम लोग का। साधना एंड चैंटिंग, मेन टारगेट इज होली नेम। और होली नेम को फैसिलिटेट करने के लिए जो कुछ साधना है, साधना है।
Studying the Damodar book, it's very good. It's about one Leela is there, Satyabhama is fasting, Satyabhama is asking Krishna what austerity I did, that I got you as my husband. Then Krishna is saying that in your previous life you fasted on Damodar.
कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है।
And one thing I want to ask, Maharaj, how to do chaturmas vrat?
I don't never do that. Chaturmas vrat में there's variety of ways, different ways.
Just one in a time you eat, that's okay.
सब कुछ okay है। कोई कोई पोटल खाता नहीं, कोई कुछ करता है, और को एक बार ही खाता है,
एक ही बार,
और कोई बॉइल्ड खाता है, वेराइटीज करते हैं। सो व्हाटएवर यू कैन,
व्हिच डे यू शुड स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट ऑन एकादशी,
गौरांग ब्रह्म एकादशी से शुरू करते हैं।
What happens if you do चतुर्मास?
भक्ति बढ़ेगा,
भक्ति बढ़ेगा। And what more fast you can do to please Krishna? दामोदर मंथ, सावन मंथ,
सब दिन सावन मंथ हर रोज कर सकते हैं,
हर रोज फास्ट कर सकते हैं।
फास्टिंग नहीं, भक्ति, भक्ति कर सकते
हैं, ठीक है।
ये जो श्रावण भाद्र वैशाख कार्तिक जो लोग कुछ करते हैं ना, उन लोग को उत्साहित करने के लिए बताए। और भक्त लोग तो हर समय करते हैं।
Thank you.
That's available.